की हरे कृष्ण आंदोलन की श्री श्री राधा रस बिहारी जी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की श्री गौर निताय की श्री प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज द शंभू डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द शंभू डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द शंभू डिवोटीज ऑल ग्लोरी ऑल गुरुंग राम की ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
तो वो नहीं होगा सब पेपर
हम लोग कल श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक वंदना रूप में पढ़े थे श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद के पांचवें अध्याय में करभाजन जी जब युगावतार की बात करते हैं और जो भगवान के पूजा की आराधना की जो विधि निर्धारित करते हैं तो उसमें उन्होंने दो श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेपसीतराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्ज वचसा यदगात अरण्यम माया मृगम दैतये प्रीतमन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान के चरणों की वंदना करभाजन जी जो नौ जगेश्वरों में से एक हैं, भगवान ऋषभ देव के नौ सन्यासी पुत्रों में से एक हैं, उसी क्रम में उन्होंने एक और स्तुति की है। विशेषकर भगवान के चरणों के वैशिष्ट्य को, चरणों की क्या, भगवान के चरणों की विशेषता क्या है, उस विषय में कहते हैं ध्येयम सदा। भगवान राम के, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो हमेशा ध्यान के विषय हैं। बड़े बड़े जो योगी हैं, महात्मा हैं, अध्यात्मवादी हैं, वे निरंतर उनके ध्यान के विषय होते हैं भगवान के चरण कमल। और चरण कमलों की विशेषता है परिभवग्न अभीष्ट दोहम। यदि कोई भगवान के चरणों का ध्यान करता है तो चरणों की विशेषता है कि यह जगत में प्राणियों को जो दुख है, पराभव है, जो निरंतर हमें झेलना पड़ता है, विविध प्रकार के अपमान सहना पड़ता है, दुख द्वंद्व में रहना पड़ता है, तो उस दुख द्वंद्व से हम लोग छूट जाते हैं, भगवान के चरणों की विशेषता है। और अभीष्ट दोहम, दुखों की निवृत्ति के बाद जो जीव का जो अभीष्ट वस्तु है, प्राप्तव्य है, उसकी भी प्राप्ति भगवान करा देते हैं। और भगवान के चरण की एक विशेषता बताई कि तीर्थास्पदम, जितने तीर्थ हैं,
हम उसको धन्यवाद बारी बारी से लग लेते हैं, एक अभी इसे लग लेते हैं, प्राणायाम तो भारी लगता है। एक कौन मैं, ठीक धन्यवाद।
तीर्थास्पदम, भगवान के चरणों की विशेषता एक पता है कि उसको तीर्थ आस्पद, संपूर्ण तीर्थों के वो आश्रय स्थान है। और विशेषकर जानते हैं तीर्थ में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उच्च कोटि के तीर्थ है वह गंगा जी हैं। तो भगवान के जो चरण कमल हैं वो गंगा जी का उद्भव स्थान भी है, वहीं से गंगा जी निकलती है, प्रकट होती है। और उन चरणों की यह विशेषता है कि शिव विरंचि नुतम, जो विश्व के बड़े बड़े व्यक्ति हैं, मूर्धन्य व्यक्ति हैं, सराहनीय व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ शिव जी और ब्रह्मा जी का नाम लिया जाता है। जितने बड़े लोग हैं तो सभी बड़े लोगों में शिव और ब्रह्मा हैं। तो यहां तक कि शिव जी और ब्रह्मा जी निरंतर भगवान के चरणों को वंदना करते रहते हैं और वे भगवान के चरण कमल शरण्य हैं, शरण लेने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त भगवान के चरणों की विशेषता है कि भृत्य आरती हम, यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेता है तो उसका दुख समाप्त होता है, आरती समाप्त भगवान कर देते हैं, चरण समाप्त कर देते हैं। और केवल यदि कोई भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, प्रणाम करता है, तो प्रणाम मात्र से भगवान उस जीव का, उस भक्त का पालन करते हैं और केवल आकस्मिक दुख ही नहीं, जो तात्कालिक हमारे पास कोई संकट आ जाता है तो उसका निवारण तो भगवान करते ही हैं, भगवान के चरण कमल करते ही हैं, परंतु इसके साथ जीव का जो भव समुद्र है, संसार संस्कृति का जो दुख है, जन्म मरण का जो प्रवाह है जिसमें हम लोग पड़े हुए, सबसे बड़े दुख का जो कारण है, उसको भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। वहां पर करभाजन जी एकादश स्कंद में भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। हम इसी वंदना के साथ फिर से हम लोग कल जो जिस कथानक पर थे उसके आगे भगवान की लीला का वर्णन करेंगे। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे तो यहां तक वर्णन किए थे। भगवान की कुछ लीलाओं को करते करते भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंच गए थे। भगवान वहां गए, राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी जनकपुर में पहुंचे। तो जब जनक जी को पता लगा कि विश्वामित्र जैसे महान व्यक्ति आए हुए हैं, तो उनके स्वागत के लिए वहां आए। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि स्वागत में उनकी क्या बात हुई, तो उसका हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। आगे की हम कथा बताना चाहेंगे कि इसके बाद जो विधिवत जो यज्ञ था, धनुष यज्ञ अथवा स्वयंवर सभा, उसका आयोजन किया गया था जनक जी के द्वारा, सीता जी के जो पिता थे। और फिर उसमें पृथ्वी के जितने बड़े बड़े वीर थे वो उपस्थित हुए थे। यहां तक कि रामायण इत्यादि ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है, सीता जी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य तो आए ही थे, पृथ्वी के लोग तो थे ही, देवता लोग भी मनुष्य का शरीर बनाकर उस सभा में उपस्थित थे सीता जी को प्राप्त करने के लिए। और फिर चालू हुआ तो एक एक करके, जैसे हम कल चर्चा कर चुके हैं कि उस स्वयंवर सभा का जो शर्त था, कंडीशन था कि जो व्यक्ति धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा, यही शर्त था। तो एक एक करके बड़े जो वीर थे आते थे, प्रतिज्ञा में तोड़ने की बात नहीं थी, वो टूट गया धनुष उसको प्रत्यंचा चढ़ाने में, तो एडिशनल और भी थोड़ा ज्यादा काम हो गया, लेकिन केवल चढ़ा देना था उसको, थोड़ा झुकाकर उस रस्सी को टाइट कर देना था, उस प्रत्यंचा चढ़ाना कहते। तो एक एक करके लोग आए, जैसे हम कल चर्चा कर चुके हैं कि उसमें उस इनविटेशन राम को नहीं मिला था, भगवान को इनविटेशन नहीं था, वो एक दर्शक रूप में थे, दर्शक रूप में वहां चले गए, विश्वामित्र जी के साथ साथ है तो अभी चले गए थे। और विश्वामित्र जी को भी इनविटेशन था उसमें भाग लेने के लिए नहीं, केवल देख सकते थे, लेकिन उनको धनुष तोड़ने से और नहीं तोड़ने से कोई मतलब नहीं था। तब जनक जी ने घोषणा किया, सभी जो पृथ्वी के जितने वीर थे वो लोग तो बैठे ही थे, देवता लोग भी असुर लोग भी, वो भी मनुष्य का शरीर बनाकर, मनुष्य के भेष बनाकर वहां उपस्थित थे। और यह घोषणा की गई जनक जी के द्वारा कि अब आकर धनुष आप लोग तोड़िए। तो प्रयत्न किए राजा लोग, लेकिन उस धनुष को थोड़ा सा उठा नहीं सके, उसमें मूवमेंट भी नहीं कर सके, थोड़ा भी उठा नहीं सके। इस पर जनक जी को बहुत दुख लगा, जानते हैं वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, एक सामान्य साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है कि कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है, उसमें किसी प्रकार की बाधा आती है तो पिता को बहुत दुख लगता है, बहुत भारी एक पिता पर उत्तरदायित्व होता है अपनी पुत्री को किसी सुयोग्य वर को पति को अर्पित कर देने के लिए। लेकिन इसमें किसी प्रकार का विलंब होता है, देर होता है, तो सामान्य पिता दुख में पड़ते हैं, उनकी चिंता का विषय है। यहां तक कि जनक जी भी, यद्यपि वो द्वादश भागवतों में से एक हैं, आचार्यों में से एक हैं, लेकिन उनको भी बड़ा चिंता हो रही थी। और उस सभा में उन्होंने उठकर यह कहना प्रारंभ किया कि मैं इस प्रकार का प्रतिज्ञा करके एक तरह से मूर्खता किया, मुझे यह नहीं पता था कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, मुझे पता होता है कि पृथ्वी पर कोई वीर जन्मा ही नहीं, कोई क्षत्रिय योग्य नहीं है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। तो वहां पर यह थोड़ा अपमान था क्षत्रिय समाज का, वीरों का अपमान था जनक जी के द्वारा, कोई वीर है ही नहीं, पृथ्वी पर कोई बलवान व्यक्ति जन्म नहीं लिया है, कोई सब सुजुग क्षत्रिय नहीं है, तो ऐसे अभी वैदिक ग्रंथों में वर्णन है कि लक्ष्मण इसका प्रतिकार किए कि यह जनक जी की अनुचित वाणी है। जहां भगवान राम वीर शिरोमणि शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति क्षत्रिय यहां उपस्थित हो, ऐसा किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं कहना कि पृथ्वी वीरों से खाली है। परंतु फिर भी लक्ष्मण जी जो कुछ कहे, वाल्मीकि रामायण वर्णन करता है कि विश्वामित्र जी भगवान राम से कहे कि राम, जनक जी को बहुत बड़ा दुख है, वो एक बड़े महान व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं, उच्च ज्ञानी हैं, तो इनके संकट को, इनके दुख को, इनके द्वंद्व को नष्ट करो और आप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। विश्वामित्र जी के कहने से भगवान राम वहां गए और धनुष तो भगवान को उठाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, बड़ी आसानी से उठा लिए, और प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूट भी गया। तो टूट गया तो स्वाभाविक है कि धनुष जो शर्त था भगवान ने वो पूरा कर दिया, तो यह निश्चित हो गया कि अब भगवान का विवाह सीता जी के साथ होगा। तो सीता जी के साथ भगवान का विवाह हुआ और विवाह के ही क्रम में, विवाह से पूर्व ही यह पता लगा जनक जी को कि दशरथ जी के और दो लड़के हैं, दो तो यहां आए हुए थे, दो और लड़के हैं, तो उनके भाई थे, उनके भी कुछ पुत्रियां थी, कुल मिलकर उनके पास चार पुत्रियां थी, उन्हीं के नहीं, सीता जी की सगी बहन नहीं थी, चचेरी बहन नहीं थी, चार उनकी भी संख्या थी। तो यह निर्धारित हुआ कि सीता जी के अन्य बहनों की शादी भी, विवाह भी भगवान राम के अन्य जो भाई हैं उनके साथ कर दिया जाए। तो इस तरह विवाह हुआ और विवाह के बाद भगवान अयोध्या में आए। मिथिला में भगवान का विवाह हुआ था, विवाह के उपरांत भगवान अयोध्या में आए। तो अयोध्या में लगभग भगवान 12 वर्ष तक रहे थे विवाह के बाद। इसके बाद जो अयोध्या की प्रजा थी, लोग थे, वे लोग यही आग्रह करते थे, मंत्री लोग भी आग्रह करते थे, प्रजा लोग भी आग्रह करते थे कि राम का राज्याभिषेक किया जाए, युवराज पद पर उनको प्रतिष्ठित कर दिया जाए। और इसके बाद दशरथ जी भी चाहते थे अपने ज्येष्ठ पुत्र को, राम को, का राज्याभिषेक करना चाहते थे। और एक दिन हठात वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी की बात हो रही थी दशरथ जी के, दशरथ जी से उन्होंने वशिष्ठ जी ने कह दिया कि भगवान को, राम को राज्य पर अभिषिक्त कर देना चाहिए, उनका कोरोनेशन कर देना चाहिए, और इसके लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे बढ़िया शुभ काल कल है, कि उस तिथि को निर्धारित किया था वशिष्ठ जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने, जो ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं। अब उनसे बड़े ज्ञानी की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छा काल है, सबसे शुभ मुहूर्त है कल। तो स्वाभाविक था कि दशरथ जी उनको राज्य पर अभिषिक्त करना ही चाहते थे भगवान राम को, इसलिए दशरथ जी राजी हो गए और उसी दिन तैयारी चालू हो गई, सुबह में तैयारी चालू हुई, कल भगवान का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। एक और भी उसी क्रम में घटना घटी थी कि जिस समय बातें हो रही थी दशरथ जी के साथ और वशिष्ठ जी के साथ, उस समय भरत जी अयोध्या में नहीं थे, अपने मामा के गांव गए हुए थे और उनके साथ शत्रुघ्न भी गए हुए थे, दो पुत्र नहीं थे। अब इतना समय नहीं था कि उन लोगों को बुला लिया जाए, दूरी था जाने में, जैसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है कि जब गए थे जो दशरथ जी की मृत्यु के बाद भगवान राम के वन में चले जाने के बाद जो दूत भेजे गए थे और अब उनके यहां से लौट रहे थे भरत जी को लेकर, तो उन्हें 5 दिन लगा था रथ से चल रहे थे, धीरे धीरे नहीं, 5 रात्रि में, तो 5 दिन जाना, 5 दिन माने भी लगा, 10 दिन का वो यात्रा था। तो इतना दशरथ जी के पास समय नहीं था कि राम को भरत जी को जल्दी से बुला लिया, वो चाहते थे, इच्छा थी कि बुला लिया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो सकता था, बुलाना संभव नहीं था, इसलिए इमरजेंसी में राज्याभिषेक कॉल कर देना चाहिए और आज्ञा दे दिया गया सभी लोगों को, प्रजा को, सबको बताया, अयोध्या को सजाया जाने लगा। जब अयोध्या को सजाया जा रहा था, दिन भर सजावट के काम होता रहा, भगवान राम को भी कह दिया गया था, सीता जी को भी कह दिया गया था कि आप प्री कोरोनेशन जो उनको राज्य पर बैठाने के पहले, राज्याभिषेक करने के पहले कुछ कृत्य होता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो सीता जी को और राम को भी कह दिया गया था कि उस दिन वो फास्टिंग करें, अन्न नहीं खाएंगे, पृथ्वी पर शयन करेंगे, उसकी चटाई पर शयन करेंगे, कम वस्त्रों को धारण करेंगे, तो चालू कर दिए थे भगवान, चालू कर दिए थे सुबह से ही कि अब उस दिन उपवास करना है। कल राज्याभिषेक है तो एक प्री कोरोनेशन फास्टिंग कहा जाता है उसको, अभी राज्याभिषेक हो तो उसके पहले फास्टिंग है, तो वो चालू कर दिए थे भगवान राम को, फास्टिंग चालू हो गया था। सीता जी भी उपवास कर रही थी, कल राज्याभिषेक है, भूमि पर शयन किए, सोना था रात्रि के समय, अभी तो दिन की ही बातें हैं, सारी तैयारी सुबह से ही चालू हो गई थी। संध्या का जो समय हुआ, देवता लोग बड़े चिंतित हुए, देवता जो स्वर्ग में के रहने वाले देवता हैं, उन्होंने प्रार्थना किया था भगवान के अवतार के लिए, तो उनको बड़ी चिंता थी कि यदि भगवान यहां पर राजा बन जाएंगे, अयोध्या में रहेंगे, तो जो दंडकारण्य इत्यादि में बड़े बड़े राक्षस उत्पात कर रहे हैं, असुर हैं, उनके वध का कोई अवसर नहीं पड़ेगा, इसीलिए विघ्न डालना चाहिए, भगवान राज सिंहासन पर न बैठ सके, राम सिंहासन पर नहीं बैठे, राजा न बने, किसी न किसी तरह जंगल में जाएंगे, जंगल में जाएंगे तो असुरों का वध वो करेंगे, तब पृथ्वी का भार दूर होगा। लेकिन ये कैसे कर, पूरा पूरा निर्धारित हो गया था, मुहूर्त निर्धारित हो गया है, कल राज्याभिषेक और सारी तैयारी चालू हो रही थी, देवता लोग घबरा रहे थे, देवता लोग शाम हो गया, ऐसे करते करते दिन भर में कोई फिगर आउट नहीं कर सके क्या करना चाहिए, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, हे भगवान कैसे न कैसे दशरथ जी का मन फिर जाए या टाल दिया जाए, होना नहीं चाहिए, अभी तो कम से कम राज्याभिषेक तो नहीं होना चाहिए, बाद में कुछ होगा, ऐसे कैसे किया जाएगा, तो जो बुद्धि को कंट्रोल करके विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, वे लोग गए सरस्वती के पास कि तुम जाओ और दशरथ जी के मन में कुछ ऐसा, उनके मन को फेर दो कि कल राज्याभिषेक की तैयारी बंद करा दे, राज्य पर भगवान को न बैठा। सरस्वती ने कहा कि मेरे यहां बस की बात नहीं है, दशरथ जी का इतना प्रेम है, उनके मन में, उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं मैं उत्पन्न कर सकता, जो उन्हें निर्णय लिया है तो उसको मेरे सामर्थ्य नहीं कि मैं टाल सकती हूं। तो सरस्वती जी को चरण पर पकड़कर देवता लोग बार बार के कुछ करो कुछ करो, तो सरस्वती ने कहा कि ठीक है, मैं दशरथ जी का अथवा और किसी का नहीं, कैकेयी का भी नहीं, तो मैं कुछ का तो नहीं कर सकता हूं, कौशल्या जी का भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा। तो शाम के समय सरस्वती जी एक दासी थी, सेविका थी, परिचारिका थी कैकेयी की, उसके मति में प्रवेश की सरस्वती जी और जब मंथरा देख रही थी, दिन भर तो उसका नाम था मंथरा, दिन भर देख रही थी सजावट बढ़िया से, मथुरा को अयोध्या को सजाया जा रहा है, तैयारी हो रही है, तो शाम के समय वह गई के पास, कैकेयी के पास, और शाम को वह जाकर रो रही थी, रोते हुए गई और कैकेयी से रो रही थी बड़ा, तो कैकेयी ने पूछा कि इसको दुख क्या हो गया, तो कैकेयी ने जब पूछा तो उसने बताया कि वास्तविकता बात है कि मुझ पर कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पर विपत्ति नहीं है, यह विपत्ति आप पर है और मैं चूंकि आपकी परिचारिका हूं, सेविका हूं, दासी हूं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो कैकेयी ने पूछा मुझ पर क्या आसन कोई विपत्ति है, तो उसने बताना प्रारंभ किया कि कल आपको पता ही होगा राम का राज्याभिषेक होने वाला है, कह के तो बड़ी प्रसन्नता हुई, तो बड़ी अच्छी बात हुई। वैदिक ग्रंथों में उपहार की बात दिया गया है, रामायण वाल्मीकि जी ने उपहार दिया, तुरंत तुमने मैसेज दिया, सूचना दिया, तुमको बहुमूल्य उपहार दिया। लेकिन कई जैसे तैसे बातचीत करने लगी, करते करते वह कहे कि रानी आपको पता नहीं है कि भारी आपके लिए एक बहुत खड़यंत्र रचा जा रहा है, और कौशल्या ने सब कराया है, राज्याभिषेक हो रहा है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन यह आपको आज तक पता भी नहीं है कि 15 दिन से तैयारी चल रही है, सजावट हो रहा है द्वार के अयोध्या की। यह बात उसने असत्य कहा था, सजावट 15 दिन से नहीं हो रहा था, लेकिन उसने कहा था 15 दिन से सजावट हो रही है और आपको बताया भी नहीं गया। और देखिए इतना महत्वपूर्ण फेस्टिवल है परिवार में, यदि होने जा रहा है, 15 दिन से तैयारी की जा रही है, तो आपके पुत्र को अलग रखा गया है, आपके लड़के को राज्य से अलग रखा गया है, अब प्लानिंग है कि भरत को नहीं होना चाहिए। और वाल्मीकि जी ने थोड़ा ऐसा हिंट भी किया है कि दशरथ चाहते थे कि हो सकता है कि कुछ हो जाएगा, विवाद हो जाएगा राज्याभिषेक में, इसलिए चाह जानकर ही दूर रखे थे। वाल्मीकि जी स्पष्ट रूप से ऐसा कहते हैं कि थोड़ा स्मूथ राज्याभिषेक हो तो दूर रहे, तो अभी कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है, ये वाल्मीकि जी इसी रूप में वर्णन करते। यानी उसने प्रारंभ किया कि भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है, उसने कहा कि राम मेरे बहुत प्रिय हैं, कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यह बात पर विचार कीजिए कि भरत को क्यों नहीं, इतने महत्वपूर्ण परिवार में इतना भारी उत्सव हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव, उसमें आपके पुत्र को क्यों नहीं बुलाया गया, इन्विटेशन नहीं दिया गया उस पर, बल्कि दूर रखा गया है, तो इसमें तो कुछ तो हो सकता है। मैथिली शरण गुप्त में लिखा है, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गेह। भरत जैसा सुशील व्यक्ति, आपके पुत्र पर भी राजा को संदेह है, कौशल्या को संदेह है, इसीलिए बुलाया तक न उसे जो गेह। राज्याभिषेक उसे करने के बाद उसे घर पर सूचना भी नहीं दी गई। कई अपने तरह से तो पहले कन्विंस ही राम से प्रेम करती थी, उसने कहा कि नहीं, किसी हालत में राम मुझे करोड़ों प्राणों से भी प्रिय हैं। कहीं कहीं नहीं कहा कि राम भी मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन कैकेयी ने, मंथरा ने स्पष्ट कह दिया कि रानी यह आपका भ्रम है, आप यह सोचती हो ना कि राम आपसे प्रेम करते हैं, दशरथ जी आपसे प्रेम करते हैं, कौशल्या आपसे प्रेम करते हैं, वास्तव में प्रेम करते थे, लेकिन वह समय बीत गया, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय पाए रिपु हो ही प्रीते। यह प्रेम करना, कौन किसे प्रेम करता है, किसे शत्रुता करता है, यह हमेशा के लिए नहीं होता, बदलता रहता है। तो वह था दिन कि आपसे लोग प्रेम करते थे, आप भी उनसे प्रेम करते थे, लेकिन समय पाकर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। और कैकेयी ने एक बहुत, मंथरा ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, बड़ा कन्विंस करने के लिए। यह कवि विख्यात बात है, सब लोग जानते हैं कि जो कमल का पुष्प होता है, पद्म पुष्प होता है, वह सूर्य के किरणों द्वारा उसका पालन होता है, रात्रि के समय जो कमल होता है बंद हो जाता है, यही सूर्य उदित होने वाले होते खिल जाता है। तो सूर्य कमल का पोषण करता है, कमल को विकसित करता है, कमल में जो सौंदर्य है, उसमें जो विकास होता है, वह सूर्य के कारण होता है। परंतु उसने बताया कि बात सत्य है, लेकिन कब तक सूर्य कमल का पालन करता है, जब तक वह पानी में रहता है, जब तक कमल पानी में है तब तक सूर्य उसको बढ़ाता है, उसका पोषण करता है, परंतु जो ही पानी खत्म हो जाता है अथवा कमल को पानी से अलग कर दिया जाता है, तो वह सूर्य क्या करता है, सुखा देता है। तो प्रथम ऐसा था आपका आपसे स्नेह करते वह दिन बदल गया है, जैसे कमल का दिन बदल गया जिसे उसे पानी समाप्त हो जाता है अथवा उसको पानी से निकालकर बाहर रखते हैं तो सूर्य की रोशनी उसको सुखा देते हैं, वैसे ही कभी था राजा दशरथ भी आपसे प्रेम करते थे, कौशल्या भी प्रेम करती थी, राम भी प्रेम करते थे, लेकिन आज सभी लोग शत्रु हैं। देखिए इतना भारी उत्सव मनाया जा रहा है और आपके लड़के को आउट रखा गया है सीन से ही, इसमें नहीं होना चाहिए। यार उसने बहुत से समझाने का प्रयत्न किया, समझाने का तो कई कई को विश्वास हो गया है, क्योंकि मंथरा के मन में सरस्वती जी भी थी, सरस्वती जी अपना पावर लगाकर ताकत लगाकर उसके मन में कुछ भ्रम उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। कई कई कन्विंस हो गई, कैकई को विश्वास हो गया कि एकदम मेरे पुत्र के खिलाफ और मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उसने पूछा फिर से मंथरा से ही पूछा कि मंथरा तो क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ उस विकट स्थिति में। तो मंथरा ने हमको बताया था कि आपने कभी बहुत दिन पहले की बात है, दशरथ जी ने आपको कुछ वरदान दिया है, कुछ वरदान आपको दे रखा है, दो आपको वरदान दिया है, तो वह वरदान आपने मांगा नहीं है, रखा है उसके पास न्यास के रूप में, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है इस समय। तो वरदान क्या हेल्प करेगा, उन्होंने वचन दिया है दशरथ जी ने हमारा क्या सहायता कर सकता है। तो उसने बताया, मंथरा ने बताया कि आप ऐसा करो दशरथ जी के पास जाओ और उनसे कहना कि आपको दो वरदान दिए हैं वो हमको देने का, जो वचन दिए हैं उसको हमको दे दीजिए, आज हमको चाहिए। तो ठीक है, वरदान तो मांगने की बात है, मैं मांग सकती हूँ, तो क्या मांगना है तुम बताओ। तो पूरा पूरा पट्टी पढ़ा रही थी कि एक एक जो दो में से एक जो वचन है उससे तुम मांग लेना कि भरत जी का अभिषेक हो, राम राजा न बने, भरत राजा बने। तो उसे समझ में आ गया, ठीक है उसे मैं कहूंगी, वो वचनबद्ध है राजा दशरथ से, मैं कह दूंगी उन्हें वचन देना ही दिए हैं, तो भरत राज का राज्याभिषेक हो। और दूसरा वरदान क्या मांगना है, तो उसने बताया कि दूसरे वरदान तुम यह मांगना कि राम वन में जाए कम से कम 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए आउट हो जाए सीन से, आउट हो, वे लोग तुम्हारे लड़के को आउट रखे हैं अब उनको ही आउट करना है। तो इसको समझ में आ गया, ये तो युक्ति काम कर सकती है। और उसने अभी बता देखा था कि तुम देखना, लेकिन इसमें वरदान मांगने में किसी पर का भूल नहीं करना, पहले तुम यह नहीं मांगना है कि राम वन में जाएं, नहीं तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा प्लानिंग समाप्त हो जाएगी दूसरे वरदान को कुछ, क्योंकि दोनों काम करना है। तो पहले तुम राजा जब शपथ करेंगे प्रतिज्ञा करेंगे बार बार कर देंगे, तो पहला तुम वरदान मांगना कि दशरथ राम भरत जी राज का राज्याभिषेक हो, और दूसरे से मांगना है कि राम वन में जाए। तो जैसे राजाओं के पास पहले होता था, यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है कोई दुख है तो पहले घर निर्माण होता था, इसे कोप भवन कहते हैं, आपको किसी प्रकार का कष्ट है विशेषकर राज्य परिवार को, तो उस घर में चला जाएगा तो कंसर्न व्यक्ति उस पास जाकर पूछता था क्या कष्ट हो, निवारण कर दो। तो कह के ही मंथरा के समझाने से जो विशिष्ट महल का एक विशिष्ट भाग में कोप भवन क्रोध का भवन रहता उसमें प्रवेश कर गई। शाम के समय दशरथ जी तो बड़ी तैयारी में लगे थे, चारों तरफ अयोध्या में तो सजाया जा रहा था, बड़ी खुशी कि किसको इनविटेशन देना है क्या क्या करना है सारी तैयारी करते। शाम को कैकई के महल में गए तो पता लगा कि कैकई अपने महल में नहीं है, वह कोप भवन में बैठी हुई है। यह समझ गए कि किसी न किसी कारण से वह नाराज है। दशरथ जी गए वहां पर उसके पास, तो देखे कि वह मलिन वस्त्र पहने हुई है, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए है, राजकीय जो आभूषण है वस्त्र है का उसने परित्याग कर दिया है और भूमि पर वो लेट रही है, सो रही है, बैठी हुई है। दशरथ जी उसके पास गए और पूछने का, दशरथ जी को ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसका अपमान किया है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी दशरथ जी की बहुत भर्त्सना करते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतों में दशरथ जी के लिए बहुत खराब शब्द का प्रयोग किया गया, स्त्रैण्यम, यूनक, जो स्त्री के गुलाम रहता है, स्त्रैण शब्द। तो उस अन्य विनय करने लगे। अब देखिए उतने क्या उन्होंने यह कहा है दशरथ जी ने कि देवी तुमको तुम्हारा किसने अपमान किया, तुम्हारा यदि कोई देवता भी इंद्र भी अपमान किया होगा तो जीवित नहीं रह सकता है, मैं अमर को देवता को ही मार सकता हूं तुम्हारे तुमको प्रसन्न करने के लिए, तुम्हारा किसने अपमान किया। तो वह सारी बातें बहुत लंबी प्रक्रिया हुई। अंत में उन्हें पूछा कि आप तुमको दुख क्या है तुम बताओ, तो उसने कहा हमें दुख किसी बात का नहीं है, हमें आपने बार बार हमको कहा है, बहुत दिन पहले दो वरदान तो वचन दिया था, दो वर देने का, वरदान देने का, लेकिन आप बार बार कहते हैं देने के लिए देते नहीं हैं। तो एकदम शपथ खाकर कहने की मुझे स्मरण नहीं है, मैं तुम जो कहो मैं अभी देने को तैयार हूं। तो जब वो तैयार हो गए तो वरदान मांगी कि ठीक है मैं मांगती हूं लेकिन आप प्रतिज्ञा कीजिए। तो कहते हैं शपथ लीजिए पूरा ही करना, बदलेंगे नहीं। तो वे तो बड़े अभिमान में थे दशरथ जी, वो प्रसिद्ध बात है ना, कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई गुरु वचन न जाई। मेरी बात, मैं तो दशरथ हूं महाराज अज का पुत्र, मेरी बात क्या करते, रघुवंश में किसी ने जन्म लिया है वह जो वचन दे देता है तो भले प्राणों चल जाए वचन की रक्षा की जाती है, और तो मैं तो विशिष्ट व्यक्ति हूं, रघुवंश का एक विशिष्ट व्यक्ति हूं, तुम मांगो। तो बहुत सजा कर वह उसको ट्रेनिंग दिया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था मांगने के लिए। कई ने मांगा कि हे दशरथ जी मेरे प्रिय पति, देह एक बार भरत ही टीका, प्रथम वरदान है आप दीजिए कि राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए, राजा भरत को बनना चाहिए। सारी तैयारी की जा रही है, देखिए कल्पना की, भगवान राम उपवास प्रारंभ कर दिए, रात्रि की बात है, सुबह से खाए नहीं थे, सीता जी उपवास कर रही थी, कल इनका राज्याभिषेक, प्री कोरोनेशन फास्टिंग कहते हैं, राज्याभिषेक से पहले कुछ कृत्य होता है। तो दशरथ जी के इससे दुखद कोई बात नहीं हो सकती थी, ये कुछ बोल नहीं सके। फिर वो कहती है मांगो दूसर बर कर जोरी, मैं हाथ जोड़कर आपको दूसरा वरदान मांगती हूं, पूरा हूं नाथ मनोरथ मोरी, मेरी यह अभिलाषा उसको पूरा कीजिए। देखिए कभी लोग कैसे उसको सजा कर रखे हैं वरदान का, पूरा वो सेंटेंस कर पूरा करने के बाद ही उनको पता लगा कि इसका क्या अर्थ है। तो उसने क्या कहा कि तपस्वी के भेष में, तापस भेष, उस व्यक्ति का तपस्वी का भेष होना चाहिए, राजकीय पोशाक राजकीय अलंकार उसके शरीर पर नहीं होना चाहिए, तपस्वी लोग साधु महात्मा लोग जैसा वस्त्र पहनते उनका वस्त्र होना चाहिए, विशेष उदासी उदासीन, साधुओं में से कुछ होते हैं ना बैरागी होते हैं, कुछ लोग त्यागी होते हैं, तो कुछ नहीं रखना है, एकदम मिनिमम कपड़ा रखना है। यह नहीं बता रही किसके लिए और कितने दिन के लिए, तो पता है 14 वर्ष के लिए। और झट से उसने क्या, अब तक तो समझ में आया कि तपस्वी के भेष में 14 वर्ष के लिए कौन जाएगा, अंत में थे राम वनवास, वन में राम को रहना होगा। यह दशरथ जी के लिए, दशरथ जैसे पिता के लिए एकदम असह्य बात थी, वो फेंटेड होकर दशरथ जी गिर पड़े, क्योंकि वो वचन को भी लौटा नहीं सकते थे, उन्हें कह दिया था कि देना है तो देना है, और उनकी प्रिय पत्नी ने कहा कि राज भरत जी को राज्याभिषेक होना चाहिए और राम को 14 वर्ष के लिए तपस्वी के भेष में जंगल में जाना चाहिए। दशरथ जी बहुत विलाप किए हैं, उसे प्रार्थना किए हैं, पहले उनको विश्वास नहीं हो रहा था, उनको लगता है कि यह तो वो परिहास कर रही हो, मजाक कर रही हो, यह कैसे कर सकती, तो राम को बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने बहुत कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं शुभ मुहूर्त, हम अभी भरत जी को बुला रहे हैं, भरत को बुला रहे हैं और शुभ मुहूर्त देकर और राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। और राम को कह दिया जाएगा कि आप जो फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, छोड़ दीजिए राज्य। राम वैसे राज्य से कोई अटैच नहीं है, उनकी आसक्ति नहीं है, उनको कोई दुख नहीं लगेगा। तो एक वरदान देने में तो हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, दशरथ जी ने कहा। लेकिन दूसरा एक बार सोचो, तुम क्यों ऐसा कह रही हो? वो समझते थे, लेकिन वो सीरियस थी, गंभीर थी। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया, देखिए दशरथ जी ज्यादा बात मत बनाइए। होत प्रात मुनि भेष धरी, जौन राम बन जाए। सुबह सूर्योदय से पूर्व प्रभात के समय ही यदि तपस्वी के भेष में अयोध्या से राम नहीं लौट गए तो मैं अग्नि में प्रवेश करके आत्महत्या कर दूंगी अथवा विष खा लूंगी। वाल्मीकि जी कहे हैं, वो कहते कि मैं अग्नि अग्नि प्रज्वलित करके उसे प्रवेश कर जाऊं था, विष खा लूंगी, आत्महत्या मैं कर लूंगी। और यह घोषित करते हुए कि उन्होंने वचन दिया था, हमको वचन का पालन नहीं किया तो मेरा तो मरण होगा और दुनिया में भारी अपजश। कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। वो प्रतिज्ञा रघुवंशियों की नष्ट हो जाएगी, बड़ा बदनामी होगी आपकी, कलंकित व्यक्ति, असत्य व्यक्ति आप जगत में सिद्ध होंगे। तो वह गंभीर थी अपने तरह से, वह किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं थी। निर्धार गया, अभी तो कह रही थी कि 14 वर्ष के लिए जंगल में जाना है, अब बताई नहीं कि कल ही जाना है। लेकिन थोड़ा सा दशरथ जी को समझाने बुझाने का करते तो श्री कहे कि न, अब विशेष बात नहीं, कल सुबह सूर्योदय से पूर्व राम को अयोध्या से निकल जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दशरथ जी को अब इससे ज्यादा सुन नहीं सकते थे, फेंटेड हो गए, गिर पड़े। दशरथ जी ने कहा है, वाल्मीकि जी बताए हैं, वाल्मीकि कहते हैं कि उसे पैरों पकड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, किए हैं कि तुम नहीं जानती हो इसका क्या परिणाम होगा। भले ही मछली जल के बिना जीवित रह सके, यह हो सके, यह तो असंभव बात है, प्रकृति में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कदाचित कोई मछली कॉम्प्रोमाइज कर ले कि बाहर भी जीवित रहेगी, प्रसन्नता से रह दे, लेकिन मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। और मेरे नहीं जीवित रहने का मतलब है कि तुमको वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और एक स्त्री के लिए सबसे कठिन दुख यह भी होता है कि वह विधवा होती है। तो तुम कितना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हो, तुम वैधव्य जीवन स्वीकार करना चाहती हो, राम बन जाएंगे तो मैं नहीं जीवित रहूंगा, और मेरे जीवित नहीं रहने का मतलब तुम्हें वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए भी कठिन बात है। लेकिन उसने कहा कि कुछ भी हो हम सब कुछ सह लेंगे, लेकिन राम को अयोध्या में नहीं देखना, तुरंत आउट होना चाहिए। तो रात्रि के समय बात ही तो रही थी, दशरथ जी वैसे ही रहे, रात्रि भर पड़े रहे, फेंटेड हो गए, बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, गला सूख रहा था, लगता है मृत्यु ही हो जाएगी। सुबह में बड़ी तैयारी, भोर में ही प्रभात से ही प्रभात फेरी और क्या क्या तैयारियों के साथ राम का राज्याभिषेक होगा। तो दशरथ जी भोर में ही प्रतिदिन जग जाते थे, तो जगने के समय से विलंब हो रहा था, और उस दिन तो अपेक्षा थी कि और जल्दी जग जाएंगे, देर हो रहा था। तो स्वाभाविक था कि वह दशरथ जी का प्राइवेट कक्ष था, सभी तो नहीं जा सकते थे, लेकिन विलंब हो रहा था। तो वशिष्ठ इत्यादि ने कहे, विशेष वशिष्ठ जी कहे सुमंत्र को, मंत्री था कि हम लोग आज्ञा देते हैं, राजकीय आज्ञा है, राजा को जल्दी से जल्दी जगाना है, बहुत से कृत औपचारिकता पूरी करनी है। तो सुमंत्र जी वशिष्ठ इत्यादि के कहने से प्रवेश किए घर में, तो वो तो दृश्य देखकर उनका तो एकदम बड़े दुखी हुए। दशरथ जी का एकदम वो फेंटेड है, मुंह से पानी आ रहा है, पूरे लगता है कि रात भर रोए रहे, आंख में लालिमा है, जमीन पर उनका वो पड़े हुए हैं और उनकी बड़ी दुर्गति की अवस्था में है। वो साहस भी नहीं कर सके, कहीं कहीं ने उनसे कहा, पूछना प्रयत्न किए कि क्या हुआ है, तो कहीं कहीं बहुत डांट कर कही कि यदि तुम जानना चाहते हो तुम यहां से जल्दी जाओ, राम को बुलाओ। राम को भेज दो, यहाँ वो समझे। तो तुरंत वो निकल गए घर से बाहर और सुमंद्र जाकर बताए वशिष्ठ इत्यादि से कि कुछ ऐसे विचित्र बातें हो गई है, समझ में नहीं आए, कई कई वहां है और बड़े रुष्ट है वह दशरथ जी की मरणासन दशा है, और उसने कैकेयी ने कहा है कि तुमसे नहीं बताना है, राम को बुला, राम से ही कुछ कहना। भगवान राम आए वैसे ही, अभी कम वस्त्र पहने थे, रात्रि में कुश के घास कुश की चटाई पर सोए हुए थे, दिन भर का उपवास रात्रि भर का उपवास था। परेश किए तो पिताजी की अवस्था को देखे तो भगवान बहुत दुखी हुए, भगवान भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या गया। तो दशरथ जी तो बोल नहीं सकते थे, वाणी अवरुद्ध हो गई थी, उनकी क्षमता नहीं थी, तो उन्होंने कैकेयी से कैकेयी को प्रणाम किया। भगवान पूछे कि माँ क्या कारण है, पिताजी की क्या दुर्गति हुई। कैकेयी ने सारी बात बता दी, जो कुछ हुआ था ऐसे ऐसे हुआ है। तो भगवान को किसी भी प्रकार का इससे दुख नहीं लगा। भगवान ने तैयार हो, भगवान कहे कि ठीक है मां ऐसी बात है, मुझे जंगल में जाना, वन में जाना है, तो एक श्लोक है भगवान के विषय में, भगवान वह भगवान पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। पहले दिन उनको कहा गया था कि काल राजा बनने वाले हैं, और राजमान ने कह दिया तो समझ भगवान इमीडिएटली कह स्वीकार कर ले, ठीक है, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, वन में मैं जाऊंगा तो पिता की आज्ञा का पालन होगा, धर्म हमारा धर्म की रक्षा में धार्मिक व्यक्ति समझा जाऊंगा, और मेरा एक और प्रिय कार्य होगा कि मेरा प्रिय भाई भरत राज्य पर राज्य का अधिकारी होगा, और जंगल में जाऊंगा तो मुझे एक विशेष लाभ मिलेगा कि बड़े बड़े साधु महात्माओं से हमें मिलने का सत्संग करने का अवसर मिलेगा। तो एक साथ काम, कर्तव्य का पालन, धर्म का पालन, पिता की आज्ञा का पालन और साधुओं का संग, ये तो बड़े बड़े सौभाग्य की बात है। वहां पर उनके भगवान की से प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः। प्रथम दिन जिस दिन भगवान को राज्याभिषेक की बात बताई गई थी तो भगवान के चेहरे पर कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई थी, कोई अंतर नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं कि पहले दिन सुने कि मुझे कल राज्य मिलेगा तो बहुत खुश हो गए थे, किसी भी प्रकार की वो चेहरे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं था। और जब दूसरे ही दिन जबकि वो उपवास कर रहे हैं, कुछ है रिचुअल्स का पालन कर रहे हैं, कह दिया गया तुमको जंगल में जाना पड़ेगा, वहां कष्ट होगा, तो उसमें भगवान उस पर भी चेहरे पर किसी प्रकार की मलिनता नहीं आई, राज्य प्राप्ति के सूचना को सुनकर उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और राज्य से जब जंगल में जाने की बात आई तो उससे उनको किसी प्रकार का उस चेहरे पर मलिनता नहीं आई। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदाम। तो वह भगवान का छवि जिसमें राज्य प्राप्ति को सुनकर किसी प्रकार का हर्ष नहीं हुआ, हर्षोल्लास नहीं हुआ, और वन में जाने का वन के दुखों को सुनकर किसी प्रकार का उसमें अम्लता नहीं आई, कष्ट नहीं आया, वो मुरझाए नहीं, तो वह भगवान का जो रूप है वो हमारे हृदय में निरंतर निवास करे और हमारे अमंगल को दूर करे। तो भगवान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे दिन वह प्रक्रिया अपनाई गई और दशरथ जी ने मना करने का प्रयत्न किया, प्रत्यक्ष दशरथ जी नहीं कहे कि राम को जंगल में जाना चाहिए, लेकिन पिता यदि राम नहीं जाते तो पिता असत्यवादी सिद्ध होते कि उन्होंने प्रतिज्ञा करके वचन देकर उसका पालन नहीं किया, तो पिता के धर्म की रक्षा के लिए भगवान वन में चले गए। दूसरे दिन प्रक्रिया पूरी हुई, जब भगवान जाने लगे, जंगल में जाने को तैयार थे, तो सीता जी भी जाने के लिए तैयार हो गई। बहुत लोग कहते थे, समझाने का प्रयत्न किया वशिष्ठ जी ने किया, और वो लोग कहे कि नहीं सीता जी को यहां रहना चाहिए, सीता जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि न, यदि भगवान राम वन में रहेंगे तो मैं अयोध्या में नहीं रह सकती हूं, वो जहां रहेंगे हम यही रहना, चाहे कुछ कितना भी कष्ट हो। सब लोग समझाने हैं तो भगवान राम भी समझाने का प्रयत्न किए, लेकिन सीता जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, मैं यदि आप जंगल में जाएंगे तो मुझे भी जाना है साथ। तो अंत में भगवान को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ा, सीता चलने को तैयार हो गई। इसके बाद लक्ष्मण थे वहां पर, वो भी कहे कि मैं भी यहां अयोध्या में नहीं रह सकता हूं, यदि भगवान राम नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं ही जंगल में जाऊंगा। बहुत लोगों ने उनको भी समझाने का प्रयत्न किया कि इसमें विकट स्थिति है, भरत जी घर पर नहीं है, पिताजी की स्थिति खराब है, कोई देख रेख करने वाला नहीं, आप यहां रहो। लेकिन बस लक्ष्मण जी स्पष्ट रूप से कहे कि नहीं, मुझे नहीं रहना, राम नहीं रहेंगे तो मैं नहीं। तो सुबह में ही, ये सब प्रभात काल में ही हो रहा था, भगवान के पास जो कुछ राजकीय आभूषण इत्यादि थे वो निकाल दिया गया, उतार लिया गया और तपस्वी के भेष में उनको सजा दिया गया। तो भगवान को सजाया गया तो लक्ष्मण भी वैसा स्वीकार कर लिए। कैकेयी ने, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि कैकेयी ने कहा कि सीता जंगल में जा रही थी, इसके भी कपड़े और आभूषण उतार लेना चाहिए, साधारण तपस्वी का सजा। इस पर विवाद हो गया, तुम्हारे वचन के अनुसार केवल राम को, लक्ष्मण तो ऐसे स्वेच्छा से वॉलंटरली ऐसा स्वीकार कर रहा है दूसरी बात है, लेकिन सीता जी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि ये तपस्वी के भेष में जाए, इनके अलंकार को नहीं हटाया जाए। वो मान गई, ठीक है ऐसे। तो भगवान लक्ष्मण जी के साथ, अपने छोटे भाई और अपनी प्रिय पत्नी सीता के साथ जंगल में गए। दशरथ जी ने बहुत आग्रह किया था, थोड़ा कंप्रोमाइज जैसा किए थे, वो चाहते थे कि हमने वचन का भी पालन हो जाएगा। तो सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र जाओ, राम को 14 वर्ष के बदले 4 दिन वन में घुमाओ, 4 दिन के बाद लाओ। सुमंत्र को अपने मंत्री को बताया, देख 14 वर्ष नहीं, 14 वर्ष के बदले कितना दिन हो जाए, 4 दिन, 4 दिन में घुमा फिरा कर ला दो, मेरे वचन का भी पालन हो गया। वो कैकेयी ने कहा था कि जंगल में भेजना है तो मैंने भेज दिया, अब तो 14 कहे थे उसमें भी 4 है, कुछ हो गया 4 दिन में ही, मैं असत्यवादी भी सिद्ध होऊंगा तो कोई बात नहीं। तो सुमंत्र जी कहे कि ठीक है, मैं भगवान से कहूंगा, और भगवान वहां पर जंगल में चले गए। तो हम इसी समय, तो बहुत बाद की घटना है, भगवान जंगल में गए, इसके बाद सुमंत्र जी गए थे वहां से लौट कर आए, इसके बाद दशरथ जी की मृत्यु हुई थी। तो इस संदर्भ में मैं इसी समय वो उनकी मृत्यु की बात कह देना चाहता हूं। दशरथ जी भगवान राम चले गए और उन्होंने कहा था सुमंत्र जी को कि 4 दिन के बाद लौट आकर लाना, तो समय से तो लौट गए, सुमंत्र जी लौट गए, राम को लाना चाहते थे, भगवान ने कहा कि नहीं, मैं 14 वर्ष के पहले किसी भी नगर में नहीं प्रवेश करूंगा, किसी गांव में नहीं जाऊंगा। सुमंत्र जी को उन्होंने भेज दिया, सुमंत्र जी यहां आए, दशरथ जी को समाचार सुना दिए कि राम और लक्ष्मण सीता जी जंगल से नहीं लौटी हैं। दशरथ जी उसी समय स्थित मरणासन दशा हो गई, ऐसे मरणासन दशा तो थी ही, लेकिन और विशिष्ट उनकी दशा खराब होने लगी, और अंतिम समय में उन्होंने अपनी आत्मकथा बताई, उनको भी विश्वास हो गया कि अब मैं जीवित नहीं रह सकता। तो उन्होंने, एक वाल्मीकि जी बताए हैं कि उन्होंने कथा बताई, कौशल्या जी से बताए मरने की दशा, या उन्होंने कहा कि मैं जीवित नहीं रह सकता हूं क्योंकि मुझे एक ऋषि का श्राप है। दशरथ जी को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि आपकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। आप लोग कथा से परिचित होंगे, नाम तो बहुत प्रचलित है, श्रवण कुमार, नाम सुने हैं ना, सब लोग जानते हैं श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की क्या विशेषता थी कि उनके जो माता और पिता दोनों थे, जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे, दृष्टि नहीं थी, देख नहीं सकते थे माता और पिता दोनों। तो श्रवण कुमार जब पिता के जो पितृ भक्त लोगों को, दो चार लोगों को आप गिनेंगे तो श्रवण कुमार का भी नाम आएगा, पिता के आज्ञा का जिसने पालन किया, एक तो भगवान राम तो है ही, पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए। श्रवण कुमार का भी बड़ा ख्याति, बड़ी ख्याति है, भीष्म पितामह की बड़ी ख्याति है। पिता के प्रसन्नता के लिए, पिता के अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए उन्होंने व्रत ले लिया कि आज ही उनमें ब्रह्मचारी रहूंगा। भीष्म पितामह तो बड़े पितृ भक्तों में उनका नाम आता है। और एक पितृ भक्तों में पुरु महाराज का नाम आता है। सुने हैं ना आप लोग पुरु का नाम? जजाति महाराज के जो सबसे कनिष्ठ छोटे पुत्र थे उनका नाम था पुरु। और जजाति महाराज को शुक्राचार्य जी ने, उनके ससुर ने शाप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ, और शाप देते ही भरी जवानी में एकदम वृद्ध हो गए। तो जो रोने लगे जजाति महाराज अपने ससुर के सामने, शुक्राचार्य जी के सामने, तो शुक्राचार्य ने एक व्यवस्था दी कि ठीक है, मेरा श्राप तो ऐसे नष्ट नहीं हो सकता है, तुमको वृद्ध रहना पड़ेगा, परंतु तुम्हारे पुत्रों में से कोई पुत्र तुमको अपनी जवानी दे देगा तो बदल सकते हो, इतनी व्यवस्था हो सकती है। तो गए घर पर, आशा थी 5 लड़के हैं, कोई ना कोई जवानी ले लेगा। तो प्रथम पुत्र थे जदु महाराज, ज्येष्ठ पुत्र थे जदु महाराज। जदु महाराज के पास जब जजाति गए और उन्हें आग्रह किया कि बेटा, कल मैं एकदम नवजुवक था, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे मामा के गांव में गया था, ससुराल में गया था, यही शब्द का प्रयोग जजाति महाराज, तुम्हारे नाना ने हमको कुछ उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है, ये बुढ़ापा देख रहे हो, ओल्ड एज, यह गिफ्ट मुझे दिया गया है मेरे फादर इन लॉ ससुर द्वारा शुक्राचार्य जी ने, तुम्हारे नाना ने हमको उपहार दिया है, मैं चाहता हूं कि यह तुम ले लो, हमारी वृद्धावस्था ले लो और अपनी जवानी मुझको दे दो। जदु महाराज से यहां क्या गया, जदु महाराज धर्म धर्म में सबसे बड़े व्यक्ति समझे जाते हैं। तो उन्होंने, आप लोग भागवतम पढ़े होंगे, स्पष्ट रूप से कह दे पिताजी ने हमको भजन भक्ति करना है, भजन करना है, अरे वृद्ध शरीर से भजन नहीं होता है, मैं मेरा उत्साह नहीं है ना। दूसरे भाई के छोटे भाई, छोटे नेक्स्ट जो पुत्र था उसके पास गए, उसने कहा, तो उसने कहा कि मैं आपकी वृद्धावस्था लेने मेरा उत्साह नहीं। तीसरा, चौथा, अंत में पुरु के पास गया। अब तो सारा निराशा में बदल रहा था उनकी प्लानिंग। पुरु के पास वो सबसे लड़का छोटा था लेकिन गुणों में सबसे अच्छा था, गुणवान लड़का था। उसके पास गए तो जजाति महाराज पहले ही हाथ जोड़े हुए थे और यह कह रहे थे कि बेटा, मुझको तुम इनकार नहीं करना, मुझको रिफ्यूज मत करना, मैं तुमके चरणों में प्रार्थना करने आया हूं, तुमसे मैं कुछ मांगने आया हूं, तुम्हारे जो बड़े भाइयों ने हमको कुछ जवाब दे दिया है, नहीं दिया है, तुम ऐसा नहीं करना कृपा करके। तो पिताजी ऐसा कर रहे थे तो पूर्व महाराज, पिताजी ने कह दिया जल्दी से जल्दी कि वह ना ही नो कह दे, उसे पहले पूरा पूरा कह दिया कि बेटा, मेरी यह जो जवानी है तुम अपने पास रख लो। तो पूर्व महाराज क्या कहे हैं, एक बात कहे हैं, वो बड़े भगवत को स्वीकार कर लिए, लेकिन स्वीकार किए तो उनको इन्होंने एक श्रीमद भागवतम में रिकॉर्डेड है, 9वें स्कंध में एक श्लोक है, हम कल भी उसकी चर्चा किए थे लेकिन आज भी हम उसको आवृत्ति कर ही दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिताजी, मुझे इस बात का बहुत खेद है, बहुत दुख है, यह जीवन भर हमारे हृदय में कसक रहेगी कि मैं प्रथम कोटि का पुत्र अपने को साबित नहीं कर सका, मैं सेकेंड कैटेगरी का पुत्र आपका हो गया, सेकेंड ग्रेड का हुआ, सेकेंड क्लास का हुआ, द्वितीय श्रेणी का मैं, यह जीवन भर मुझे कसक रहेगी। तो उन्होंने, पूर्व महाराज ने कहा है जजाति से, अपने पिताजी से, उत्तमस्तु चिंतितम कुरिया, फर्स्ट क्लास का जो पुत्र होता है वो उसको पता लगा लेता है कि पिताजी को क्या अभीष्ट है, पिताजी को कहना नहीं पड़ता है, मुंह नहीं खोलना पड़ता, उत्तमस्तु चिंतितम कुरिया, उत्तम फर्स्ट क्लास का जो पुत्र होता है वह जान जाता है कि पिताजी यह चाहते हैं तो उसके अनुसार कर देता है।
और उत्तम सुंतितम कुर्यात् प्रोक्त कारित मध्यम।
सेकेंड क्लास का जो द्वितीय श्रेणी का जो पुत्र होता है जब पिताजी कोई आज्ञा देते हैं कुछ कहते हैं तो उसका पालन कर देता है तो सेकेंड क्लास का। तो आप कह दिए इसके बाद मैं आपकी वृद्धावस्था ले रहा हूं तो मैं फर्स्ट क्लास का पुत्र नहीं रहा, मुझे वो पहले आपके पास अप्रोच करना चाहिए था, आप चेंज करना चाहते थे अपनी वृद्धावस्था को अपने हम लोगों के जवानी से, मुझे पहले आना चाहिए था लेकिन मैं लेट कर गया तो मैं सेकेंड क्लास का पुत्र हूं। मैं उत्तमस चिंतुतम कुर्यात्
उत्तमस्तु चिंतितम कुर्यात्
प्रोक्त कारिच मध्यम। और थर्ड क्लास का पुत्र कौन है?
अधमो अश्रद्धया कुर्यात्।
अधम पुत्र वह है कि पिताजी आज्ञा दे देते हैं तो आज्ञा का पालन तो करता है लेकिन अनमनस्य होकर अश्रद्धा के साथ करता है। सुना कि क्या ऐसे, ये तो अनऑथराइज आज्ञा है पिताजी की लेकिन पिता है तो पालन करना चाहिए, मैं क्या करूं, कर देता है अश्रद्धा के साथ। फर्स्ट क्लास का दो पुत्र है तो जान जाता है कि पिताजी क्या चाहते हैं वो कर देता है। दूसरे सेकंड क्लास का है कि वो पिताजी कह देते हैं तो श्रद्धा के साथ उसका तुरंत इमीडिएटली पालन कर देता है। थर्ड क्लास का पुत्र वह है जो पालन तो करता है लेकिन अश्रद्धा के साथ कहता है, पूर्व महाराज कहते हैं। और पूर्व महाराज ने एक और बात कही है, कोई फोर्थ क्लास का भी होता है पुत्र क्या? तो उन्होंने कहा कि ना, फोर्थ क्लास का पुत्र नहीं होता है, केवल तीन तरह के, उत्तम मध्यम और अधम।
और अकर्तुः उच्चरितम पितुः।
और जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है वह उच्चरितम शब्द है संस्कृत में, हो गया उच्चरितम। उच्चरित मतलब हमारे शरीर से कुछ विकृति निकलती है उसको उच्चरित कहते हैं, जैसे पसीना निकलता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, खराब अंश है, त्याज अंश है, शरीर से निकलता रहता है। आंखों में कुछ निकलता है ना, सफेद रंग का निकलता है, नाक में निकलता है, सुबह में जीभ पर एक विशेष प्रकार का द्रव्य निकलता है, इसके असंभव मूत्र निकलता है, तो उसको उच्चरितम कहते हैं। शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है वो अनावश्यक चीज निकलता है, तो बहुत चीज निकलता है लेकिन उच्चरितम विशेष करके मल और मूत्र के लिए कहा जाता है। तो उसने पुरु ने कहा कि वह पुत्र नहीं है, अब उसको पुत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है वह पुत्र है ही नहीं, तो वह क्या है, क्या उसको कहेंगे, क्या नाम देंगे उसका, उसका नामकरण क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद जी बार बार से आप पर्पट में कई एक जगह उसको एकदम डायरेक्ट सिमिलर एक शब्द है, अनुप्रास जैसा है, अनुप्रास कहते हैं ना जब समान समानार्थ समान अर्थ समान शब्द होता है, तो उसको उस शब्द से उन्नत किया। तो श्रवण कुमार के हम विषय में कहते हैं श्रवण कुमार भी उसी कटघरी के भक्त थे, दशरथ जी कथा बता रहे थे, तो दशरथ जी ने बताया कि एक समय की बात है, मेरी दशरथ जी की योग्यता थी कि कोई कहीं से शब्द किया जाता है तो बिना लक्ष्य को देखे वहां पर बाण का संधान कर सकते थे, उसको हिट करता था, शब्द वेदी भेदी बाण कहते हैं, आंख से देखने की जरूरत नहीं है, कहीं से आप शब्द कीजिए और कहीं से बाण चलाएंगे तो उसी को हिट करेगा, लक्ष्य को हिट करता है, तो उससे कुछ लोगों में विद्या होती है, दशरथ जी में विद्या थी, कहीं से आवाज कीजिए और यहीं से बाण मारेगा तो वहीं पर जाकर बाण लगेगा, उसी व्यक्ति को लगेगा, उसी वस्तु को लगेगा, तो इनमें क्षमता थी। तो उन्होंने दशरथ जी ने बताया कि एक दिन की बात है, मैं सरजू नदी के किनारे रात्रि के समय एक ऐसी जगह पर बैठा था, खड़ा था धनुष बाण लेकर हिंसक जंतुओं को मारने के लिए, कि रात्रि के समय पानी पीने के लिए विशिष्ट जगह पर आएंगे तो मैं वहां उनको मार दूंगा। तो देखने की जरूरत नहीं थी कौन है, अनुमान कर लेना है कि रात्रि के समय कौन आएगा, पशु आएगा, तो उसी समय उनको आवाज सुनाई पड़ी, से घड़े को जब पानी में डुबाते हैं तो एक आवाज आती है ना, घड़ा को जब पानी में डुबाते हैं तो एक आवाज आती है, उसी तरह की आवाज आई। तो वो अनुमान कर ले कि रात्रि में घड़ा कौन है, रात्रि में जंगल में कौन है, वो ना कोई हाथी जब पानी पीते हैं सूंड से खींचते हैं तो उसी तरह की आवाज आती है। तो उन्होंने समझा कि हो ना कोई हाथी पानी पीने के लिए आया हुआ है। निबिड़ अंधकार था, देखने की जरूरत नहीं थी, और दूर बैठे भी थे जंगल में कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने सरसंधान किया और उनसे मार दिया और जो लक्ष्य पूरा हो गया। मारकर देखने गए उसी दिशा में गए कि ठीक है, मैं ये हाथी को समझते कि मैं हाथी को मार दिया हूं। वहां पर गए तो वो तो वह दृश्य देखकर दशरथ जी का हृदय कांप गया। उन्होंने देखा कि तो एक ऋषि कुमार है, व्यक्ति आदमी है, और उसके ठीक छाती में वो बाण लगा हुआ है और वह एकदम शरीर उसका लथपथ है, धूल धूसरित हो गया, रक्त रंजित उसका शरीर हो गया, तड़प रहा है, चित्कार कर रहा है। वहां दशरथ जी गए तो वह यही कह रहा था कि मैं एक निर्दोष महात्मा हूं, साधु हूं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं जंगल में रहा, मैं किसके कुछ बिगाड़ा, मुझको किसने मार दिया, मैं किसका शत्रु हूं, मुझसे किसकी ईर्ष्या हो सकती है। वैसे कर रहा था तो वहां पर दशरथ जी गए देखे तो दशरथ जी बड़े कांपने लगे, हमसे बड़ी भारी भूल हुई है, बड़ी हमसे पाप हुआ है। तो वहां पर गए तो अंत में दशरथ जी पूछे आप कौन है, तो उस व्यक्ति ने श्रवण कुमार ऋषि कुमार था, उसने बताया लड़के ने कि ऐसी स्थिति है महाराज, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, मैं उनको तीर्थ यात्रा के लिए घुमाता रहता हूं, उसी समय में इस जंगल में रुका हुआ था और मैं वो प्यासे हैं, जल लेने के लिए आया था और आपने हमको बाण मारा है, तो मैं तो चाहूं तो आपको शाप दे सकता हूं, लेकिन आपको शाप देकर मैं अभी जला सकता हूं, भस्म कर सकता हूं, लेकिन इसमें भारी हानि होगी, हमारे पिताजी भी मर जाएंगे, वो पानी के बिना मर जाएंगे, इसलिए मैं शाप नहीं देता हूं, आपको मैं जीवन दान देता हूं, जीवन की रक्षा, आपकी मृत्यु नहीं होगी, परंतु आप दो काम कीजिए, मुझे असह्य वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, इस बाण को हमारे हृदय से निकाल दीजिए, और इसके बाद जो जल है यहां पर ले जाइए, हमारे माता पिता थोड़ी दूरी पर आश्रम है, उनको जल पिला दो, वो पानी के बिना तड़प रहे, अन्यथा उनकी मृत्यु होगी। दशरथ जी जब ही उसके कर से जही बाण निकाले, हृदय में लगा हुआ था, निकाले तब तक और भी ब्लड उसमें ओजिंग हुआ, ब्लड बाहर आया और ऑन स्पॉट उस लड़के की मृत्यु हो गई। तो उसे उसी घड़े में दशरथ जी पानी, दशरथ जी आत्मकथा कर रहे, अपने ही से कह रहे थे कौशल्या जी। तो इसके बाद दशरथ जी गए वहां पर, कहते मैं गया तो इसमें विलंब हुआ था, इसलिए वो तो देख नहीं सकते थे, उस आवाज उनको मिली, वो लोग समझ गए कि हम लोगों का, वो लोग समझते थे कि श्रवण कुमार पानी लेकर आए, तो वो लोग कहने लगे पुत्र तुमने इतना विलंब क्यों किया, हम लोग प्यासे हैं, हम लोग को दुख हो रहा है, तुमने क्यों इतना देर क्यों कर दिया। अब दशरथ जी क्या कह, दशरथ जी अपना नहीं साहस कर नहीं करना चाहते थे, अपना आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते थे, परंतु फिर भी पानी देने लगे तो वो लोग मना कर दिए कि नहीं, कौन है व्यक्ति, हमको ऐसा लगता है कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार कोई अन्य व्यक्ति है, तुम कौन हो। तो बाध्य होकर दशरथ जी को अपना परिचय बताना पड़ा, उन्होंने बताया कि मैं अयोध्या का राजा हूं, दशरथ मेरा नाम है, सारी बात रिलेट कर दिया कि मुझे ऐसी भूल हुई है, आपका पुत्र जीवित नहीं है। तब ऋषि लोगों के पानी पीने जाए, उन्होंने तुरंत श्राप दिया, उन्होंने कहा कि देखो हम तो अभी तुमको भस्म कर सकते थे, और इसके साथ तुम पर ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण की हत्या का भी पाप नहीं लगेगा, परंतु हमारी जैसे मृत्यु हो रही है अपने पुत्र के वियोग में, उसके बिना ठीक ऐसी आपकी भी दशा हुई, अपने पुत्र के लिए आपको मरना पड़े। तो ऋषि का श्राप था, और दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश उस समय तक दशरथ जी को कोई पुत्र था पुत्री नहीं थी, तो एक तो भारी दुख तो हुआ, लेकिन इस सांप ने यह भी निर्धारित कर दिया कि उनको पुत्र होंगे अथवा होगा। ये वो भी बड़ी नैराश्य था, जानते हैं ना दशरथ जी बहुत दिन तक तो पुत्र नहीं होते थे, तो कम से कम सांप मिल गया तो एक पुत्र तो होगा, इसके बाद मृत्यु होगी, नहीं तो पहले तो पूरा होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर भी तो कहे तो कथा अपनी बताए कि ऐसी स्थिति है, मैं लगता है कि ऋषि का श्राप परिपक्व हो गया है अब, और स्थिति आ ही गई। वैसे करते करते दशरथ जी की मृत्यु हो गई, चौथे अथवा पांचवें दिन जितना दिन लगा था उसे मृत्यु हो गई। तो वैदिक इतिहास में कुछ है तो श्रवण कुमार के विषय हम कह रहे थे। श्रवण कुमार क्या कहा, अपने माता पिता को फोटो बनाते हैं ना, पेंटिंग बनाते हैं, तो सचमुच ऐसे घुमाते थे तीर्थों में। तो हमें कह रहे थे पितृ भक्तों में कुछ लोगों का नाम लिया जाएगा, तो श्रवण कुमार का नाम है, भगवान राम का नाम है, भीष्म पितामह का नाम, तो पुरु का नाम है, भागवतम में पुरु का बड़ी प्रतिष्ठा के साथ नाम लिया गया है। उत्तमस्तु चिंतितम कुर्यात, उत्तम पुत्र वह है जो पिता की आगे मनोभीष्ट को जान जा उसके अनुसार वह कर देता है। प्रोक्तकारी च मध्यम, और जो कहने पर करता है वो सेकंड क्लास का पुत्र है, और थर्ड क्लास का वो कहते हैं कि अधमो अश्रद्धया कुर्या, थर्ड क्लास का पुत्र वह है जो पिता की आज्ञा का पालन करता है लेकिन अश्रद्धा के साथ करता है, और अकर्तु जो पालन ही नहीं करता है तो वह उच्चरितम पितु, वह पिता का उच्चरित है, मूत्रम है, उसे पुत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, यह पूर्व महाराज ने कहा। तो भगवान राम एक धर्मिष्ठ थे, कल हमें की चर्चा के धर्मिष्ठम आर्य पचसाम यदगात अरण्य। तो भगवान राम जंगल में चले गए, वैभव का, अयोध्या के वैभव का त्याग किया, पिता की धर्म की, पिता की वाणी की रक्षा होनी चाहिए, इस उद्देश्य से भगवान जंगल में स्वेच्छा से चले गए। तो भगवान इसके बाद जंगल में गए, यह प्रसिद्ध घटना है। जंगल में गए तो ये भगवान के वन गमन एक विशिष्ट लीलाओं में से है, विशेष भगवान का चरित्र है। वाल्मीकि इत्यादि अथवा श्रीमद भागवतम है अथवा अन्य जितने भी रामायण है, तो इस उपाख्यान का बहुत से विस्तार से वर्णन किया गया है और इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, भगवान का विचित्र त्याग, अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए जंगल में चले गए। जंगल में जब भगवान जा रहे थे तो जैसा हम पहले वर्णन कर चुके हैं, कह चुके हैं, पिताजी ने तो यही कहा था सुमंत्र से कि चार दिन इनको जंगल में घुमाकर उतो ला देना। तो भगवान जा रहे थे, रथ पर ही बैठकर कुछ दिन तक चले। तो प्रथम रात्रि भगवान ने तमसा नदी के तट पर व्यतीत किया, तो भगवान के साथ अयोध्या की प्रजा भी बहुत, हजारों हजारों लोग चढ़ रहे थे, कहते हम भी जंगल में जाएं। परंतु एक समय, एक दिन रात्रि के समय सब लोग सोए थे, तो रात्रि के समय मध्य रात्रि में सुमंत्र को जगाया भगवान राम ने, और घोड़ा कहा कि आप रथ को सजाइए कि सब पीछा करेंगे तो हमेशा चलते ही रहेंगे। तो क्या किया भगवान, जब बैठ गए तो भगवान कहे कि इसको रथ को चलाइए अयोध्या की तरफ, तो वहां से अयोध्या के रास्ते में चलाए और उधर से कहीं जंगल में इधर उधर करके फिर लौट कर दूसरे रास्ते से इधर आगे बढ़ गए। तो सुबह में लोग जगे तो देखे कि भगवान नहीं है, तो रथ का जो निशान था, पहिए का निशान था, चक्के का निशान था, उसको तो लोग कन्विंस हो गए कि तो अयोध्या रथ लौट गया, उधर ही गया है, तो उधर ये लोग लौट आए, सब लोग लौट आए। लेकिन अब चार लोग के उन साथ में रहे, भगवान राम रहे, सीताजी, लक्ष्मण और सुमंत्र, मंत्री था दशरथ जी के जो मंत्री थे वो। इसके बाद से दूसरी रात्रि गंगा जी के तट पर उन्होंने व्यतीत किया। दूसरी रात्रि गंगा जी के तट पर, गंगा जी आती हैं तो वहां रहे, और इसके बाद भगवान सुमंत्र को स्पष्ट रूप से कह दिया कि नहीं, मैं नहीं लौटूंगा, आप भी जाइए। सीता जी को लौटाने का प्रयत्न किए तो सीता जी ने कहा कि मैं लक्ष्मण भी लौटने का तो प्रश्न ही नहीं था। तो अब तीनों जंगल के लिए प्रस्थान किए, इसलिए जंगल प्रस्थान तो कर ही चुके थे, अब जंगल में जाना था, गंगा जी को पार करना था। उस पार करते समय एक बड़े व्यक्ति से भगवान की मुलाकात हुई थी, उसको निषाद राज, निषाद मछली पकड़ने वाली जो विशिष्ट जाति है उनको निषाद कहते हैं। तो उनमें से भी कोई नायक होता है, उनका भी कोई लीडर होता है, तो एक निषाद राज था, बड़ा व्यक्ति था, भगवान का भक्त था, और उसकी मित्रता थी दशरथ जी से, उसी राज्य का व्यक्ति था दशरथ, तो छोटा सा एक राजा ही था, निषाद राज कहते भी। तो उसने बहुत आग्रह किया भगवान से कि भगवान आपके पिताजी ने, दशरथ जी ने आपको जंगल में भेज दिया है, आपकी मां ने भेज दिया है, तो मेरा राज्य है, आप यहां का राजा बन जाइए, श्रृंगवेरपुर गांव का नाम है, यहीं के आप राजा रहिए और हम लोग छोटा ही राज रहेगा, आपकी सेवा करेंगे, आप राजा रहेंगे, आप यहीं रह निवास कीजिए, हम लोग आपकी सेवा में रहेंगे। भगवान ने वहां पर स्पष्ट कहा है कि नहीं, राजा बनने की तो बात दूर है, मुझे तो ऐसे धर्म का पालन करना है कि 14 वर्ष तक किसी गांव में प्रवेश ही नहीं करना है। आप लोग जानते होंगे भगवान राम 14 वर्ष तक किसी गांव में नहीं गए थे, तपस्वी के लिए नियम है कि किसी गांव में न जाए। रामायण में ऐसा वर्णन है कि भगवान जब जा रहे थे चित्रकूट के तरफ, तो कुछ ऐसे रास्ते थे जंगल के कि गांव के बीच से गुजरता था रास्ता, कहीं कहीं देखते हैं ना, कहीं कहीं हाईवे एकदम बीच से नगर से गुजरता है, अभी तो बहुत जगह बाईपास बनाया जा गया है, लेकिन एकदम बीच बीच से गुजरता है, तो गांव में ऐसे रास्ते भी होते हैं, बड़ा गांव होता है और रास्ता पगडंडी बीच से गुजरता है। और भगवान ने कोथा की वनवासी के रूप में रहना है, गांव में नहीं प्रवेश करना है और आगे उसके आगे जाना है गांव से, तो कैसे जाएंगे, तो गांव से पहले ही गांव के बाहर आउटर स्कर्ट में राम आते थे तो किनारे किनारे खेत से ऐसे आगे जाते, फिर रास्ता पकड़ कर जाते। तो निषाद राज से कहा कि मैं किसी भी कीमत पर राजा बनने की तो बात है, मैं किसी गांव में ही नहीं जाऊंगा। और ऐसे भोजन के विषय में भी था, कोई कुकिंग किया हुआ भगवान, कोई कुकिंग मतलब जो वन से जो उत्पन्न वस्तुएं हैं वही केवल खाते थे, जंगल में जो उत्पन्न होता है कंद मूल फल उसी का आहार करते थे, 14 वर्ष तक उन्होंने ही किया। तो इस सुमंत्र को उन्होंने भेज दिया। एक विशिष्ट घटना भगवान के साथ घटी थी, एक जो नाविक सो केवट कहते हैं, नाविक जो पार गंगा जी को किया था, गंगा जी को पार करना था तो भगवान नाव से पार किए थे, सभी रामायण में जितने भी रामायण में थे वर्णन किया गया है कि भगवान तैर कर नहीं पार किए थे गंगा जी को, नौका से पार किए हुए थे। तो सुमंत्र को विदा करने के बाद भगवान उस जो नाविक था उस घाट पर, उसे उन्हें आग्रह किया, लेकिन दुर्भाग्य यह देखिए विपत्ति आती है तो कितनी भारी विपत्ति, एक भगवान है जगत के नियंता है, अतः वह नहीं तो कम से कम लीला आवेश में दशरथ जी के चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन नौका गंगा जी को जो पार करना होगा तो उन्होंने जो केवट था नाविक था उसे प्रार्थना किया कि हमको गंगा जी पार कर दीजिए। तो वह व्यक्ति एकदम फ्लैटली रिफ्यूज किया, ना मैं आपको नहीं पार करूंगा। तो अवाक मान ले कि भगवान की सेवा कौन नहीं कर दो, साफ कह दे कि ना मैं नहीं पार करूं। बड़ी आश्चर्य की, आशा नहीं की जा सकती थी भगवान राम की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दे, चक्रवर्ती सम्राट है, राजा के पुत्र हैं, उनको कह दे कि मैं तुमको नौका से ही नहीं पार करूंगा। तो उसने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपको नहीं पार करूंगा। भगवान प्रार्थना करके पूछे कि क्या आपको क्या आपत्ति है, क्यों नहीं हमको पार करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके व्यक्तित्व को समझता हूं, आपके रहस्य को, आपकी महिमा को मैं जानता हूं, इसलिए मैं नहीं। भगवान के मेरी महिमा क्या है, हमारी क्या कैसा बड़प्पन है, अथवा क्या दोष है हमारे, कौन सा हमसे दोष हुई है कि आप अपने नौका से पार नहीं करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि दे आपके चरण, आप में दोष नहीं है, लेकिन आपके चरण से कोई धूली कण स्पर्श होते हैं तो उस धूली का एक बहुत भारी दोष है, वो क्या दोष है, हमारे चरण धूलि में कौन सा ऐसा विकृति है, क्या दोष है? उसने बताया कि हमने सुना है, जब हम कल चर्चा किए थे, हमने सुना है कि आपके चरणों का स्पर्श करके, आपके चरणों की धूलि का स्पर्श करने से एक पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। तो मैं आपको नौका पर यदि आपको बैठाता हूं तो आपके बिना जूता के ऐसे आप चल रहे हैं, चरणों में धूलि लगी हुई है, इसे नौका में पटे तो आपके चरणों का जो धूलि है वो हमारे नौका से स्पर्श करेगी, तो मेरी यह नौका को खतरा है, यह स्त्री में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क है ना। नाव जिसे को रामायण में वर्णन किया है वो कहा है कि हमारे पास और कोई जीविका का साधन नहीं है, ऐसे ही बड़ा परिवार है, किसी तरह खेवाई नाव लोगों को पथिक लोगों को पार करता हूं, दिन में कुछ पैसा आता है तो उसे पुत्र है परिवार है पालन करना चाहिए, मेरा कोई और बिजनेस नहीं है। और यह यदि यह नौका से आपके चरणों का स्पर्श होगा तो नौका स्त्री बन जाएगी, तो मेरी जीविका का साधन खत्म होगा और एडिशनल बर्डन एक और स्त्री, तो क्षमा कीजिए यह मैं नहीं करना चाहता हूं, हमारी जीविका नष्ट हो जाएगी, आपके चरणों का ऐसा प्रभाव है, आपके चरणों में छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन। और उन्होंने कहा कि वो तो जब आपके चरणों में ऐसी विशेषता है कि पत्थर को जब स्त्री बना सकता है, बना वो धूलि बना सकती है, तो पत्थर की अपेक्षा तो बहुत नरम है और पानी में कई महीनों से पानी में पड़ा हो तो काष्ट बहुत नरम है, यह स्त्री बन जाएगी इसलिए। और उसने प्रार्थना किया कि यदि आप पार करना चाहते हैं तो एक कंडीशन पर मैं आपको पार कर सकता हूं, मतलब कि क्या आपका क्या शर्त है जिसे मुझे पूरा करना है। तो उसने कहा कि मैं पार करने को तैयार हूं लेकिन आपके पैरों को पहले धो लेना चाहता हूं, उसमें एक भी धूलि कण नहीं होना चाहिए। तो अब भगवान क्या कर सकते थे, उसने कहा कि यदि आप यह शर्त स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा, गंगा जी के दूसरे साइड कुछ दूर पर कम जल है, घुटनों भर जल है, वहां पार कर जाइए, लेकिन यदि आप सचमुच हमारे नाव का प्रयोग करना चाहते हैं, नौका से पार करना चाहते हैं, तो यह शर्त आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं आपके चरणों को धोऊंगा। तो भगवान स्वीकार कर लिए, कोई विकल्प नहीं था, लाचारी थी, विवशता थी कि चलो अब क्या करें, धो लो तुम्हारी इच्छा है। तो वह है, अनेक रामायण में ऐसा वर्णन है को जल लाया, गंगा जी का जल लाया, गंगा जी जिन चरणों से वह गंगा जी का जल गंगा जी निकली उन्हीं जल को फिर से धोने के लिए लाए, और केवट भगवान के चरणों को धोया था। जब यह सौभाग्य केवट को उस नाविक को प्राप्त हुआ तो बड़े बड़े जो देवता थे इंद्र इत्यादि देवता वो स्वर्ग में आ गए, स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा किए थे ऊपर से, उसे सौभाग्य की सराहना करते हुए, यह सौभाग्य बहुत इन्हें गिने लोगों को मिलता है, इस एक नाविक को केवट को यह सौभाग्य मिला। तो उसने भगवान के चरणों को धोया और धोकर जल को क्या किया, क्या किया होगा, जल छोड़ फेंक दिया होगा कहीं, उस पानी का क्या करेंगे, भिसलिट तो नहीं था कि उसको लेकर ड्रिंकिंग वाटर हो गया, उसको पी गया बड़ा कठौता में, काठ के वो था ना बर्तन में लाया था, काठ का बर्तन था, स्टील का था, किसी का नहीं था, तो पहले तो जम कर पिया जितना पी सकता था, इसके बाद अपने स्त्री को बुला दिया, उसको पीने के दे दिया, बच्चे आ गए इकट्ठे हो गए, भगवान के चरण जल को वो पिया था और अपने सभी। तो वहां पर वर्णन ऐसा श्रीमद् भागवत वैदिक ग्रंथों में रामायण में किया गया है कि भगवान को तो अभी पार नहीं किया लेकिन जब वो चरणों को पार कर गया तो उसके जो पितर लोग थे फोर फादर अनसेस्टर्स वो तो भवसागर को ही पार कर गए, पहले भवसागर से उनको पार कर दिया, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए ले पार, पहले उनको पार कर दिया, भवसागर से मैंने जन्म जन्म का जो पूर्वज लोग सब लोग भगवान के धाम में चले, पहले उनको भवसागर से पार कर दिया, इसके बाद भगवान को बैठाया। तो भगवान को उसने बैठाया नौका पर और भगवान को पार किया। ऐसे यहां पर बहुत बढ़िया से वर्णन है, पार करते समय जल्दी जल्दी वो नौका नहीं चला रहा था, जितना देर संभव हो सकता था उतना देर किया, क्योंकि जानता था कि यही भगवान के साथ रहने का समय है। डायरेक्ट नहीं पार किया, इधर घुमाते घुमाते नौका बिहार खूब इधर उधर कराता, घंटों तक कराता रहा। इसके बाद भगवान को उधर ले गया दूसरे तट पर, मैंने गंगा जी के दक्षिण तट पर, अयोध्या से प्रयाग दक्षिण है, बीच में गंगा जी बहती है, तो स्वाभाविक वहां पर गंगा जी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। भगवान पश्चिमी तट पर, उत्तरी तट पर थे, उनको दक्षिणी तट पर खड़ा कर दिया। भगवान उतर गए रेत पर, बालू पर जब भगवान खड़े हुए तब विदा लेने की बात थी। भगवान उतर गए, लक्ष्मण जी भी उतर गए, सीता जी उतर गए। भगवान को एक बहुत बड़ी दुख था उस समय, भगवान राम को, कि मैं इससे इतना काम लिया, इसको मैं कुछ दे नहीं रहा हूं, और भगवान के पास सचमुच कुछ था नहीं, क्योंकि कैकेयी ने कहा कि तपस्वी के भेष में रहना है, कोई भी आभूषण नहीं ले सकते, कोई पैसा नहीं ले सकते, तपस्वी के एकदम निष्किंचन होकर अकिंचन होकर जंगल में जा रहे थे। भगवान को इस बात का बहुत खेद हो रहा था कि मैं केवट को कुछ तो देना चाहिए, एकदम फ्री निःशुल्क काम लेना, सेवा लेना उचित नहीं है, शिष्टाचार है, हमको कुछ देना चाहिए, लेकिन अपने पास कुछ था नहीं। भगवान बहुत संकुचित हुए। जो लक्ष्मीपति हैं उनको आज इतनी भारी विवशता थी कि केवट को जो पार करने में कितना पैसा लगता होगा उस समय, बहुत कम, लेकिन उतना भी नहीं था, बड़े संकुचित हो रहे थे। सीता जी ने देखा भगवान के संकोच को, भगवान कुछ देना चाहते हैं, राम इनके पास कुछ नहीं है, तो सीता जी जान गई भगवान के राम के विवशता को, तो बहुत बहुमूल्य सीता जी के हाथों में अलंकार थे, अंगूठी था, रिंग था, बहुत बहुमूल्य। अब उसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना, यदि ब्रह्मांड के संपूर्ण धन को बेच दिया जाए तभी उसमें अंगूठी का जो एक कण के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन वो अब भगवान को देना है कुछ और दूसरा कुछ है नहीं, तो सीता जी ने तुरंत निकाल दिया और केवट को नहीं दिया, भगवान के हाथ में दे दिया। तो भगवान बड़े खुश हो गए, समस्या का समाधान हो गया, मेरी लाज रह गई, मेरा वचन रह गया कि मैं सेवा लिया हूं तो उसको दे सकता, तो उस केवट को देने लगे। तो केवट ने उसे स्वीकार नहीं किया, केवट बल्कि रोने लगा कि हे भगवान, आज मुझे क्या नहीं मिल गया, आज मैं क्या नहीं मिल गया हमको, और हमको देकर आप मुझे संकोच में मत डालिए, मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहता हूं, आप हमारी नौका हमको ऐसा सौभाग्य दिए, अपने चरणों को धोने का सौभाग्य आपने मुझको दिया, और मुझे यह सौभाग्य दिया कि मेरी नौका से गंगा जी को आप पार किए। केवट ने सब बातों की चर्चा किया है कि मैं जानता हूं आप, यह एक सामान्य नरलीला है, अन्यथा आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड को बलि महाराज के समक्ष जो पृथ्वी को नाप रहे थे तो भगवान दो पैर में ही नाप लिए थे, पूरा पृथ्वी के जितना, इस पृथ्वी पर जितना भूभाग है और स्वर्गीय लोग ऊपर और नीचे के सबको दो पैर में ही नाप लिए, तो आपके लिए व्यवस्था नहीं थी, भगवान तो नदी को पार कर सकते थे, जो दो पैर में ही सारे ब्रह्मांड को नाप सकते हैं, सोई कृपाल केवट ही निहोरा किए जी हैं, जही जग तीन पग होते थोरा, तीन पैर से ही छोटा पड़ गया था ब्रह्मांड में, दो पैर में ही नाप लिए थे, आपको आपने मुझे सौभाग्य दिया, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, लेकिन भगवान बहुत कहना चाहते, एक नहीं मेरी इच्छा है आप कुछ रख लीजिए ले लीजिए, अंत में लिया नहीं, कहा कि भगवान यदि आप इस समय तो किसी कीमत पर मैं नहीं ले सकता हूं, परंतु अवश्य यह बात है कि आप लौटते समय 14 वर्ष के लिए आप जंगल में जा रहे हैं, तो आप फिर 14 वर्ष के बाद लौटेंगे, तो उस समय भी आपको लौटते समय भी गंगा जी को पार करना होगा। तो उस समय आप जो कुछ देंगे मैं उसे ग्रहण कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इस समय मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे लोक में इस बात को और ढंगों से ही प्रस्तुत किया जाता है, जैसे आप लोग जानते होंगे उसने भगवान से कहा कि यह नाविक के नैतिकता के विरुद्ध है आपसे कुछ लेना। तो नैतिकता है इस व्यवसायिक लोगों का जो व्यवसाय करते हैं, कि जो नाविक होता है तो दूसरे नाविक से वह कोई पैसा नहीं लेता है। और आप जानते हैं ना बात है, नहीं जानते हैं, यहां तो खूब गाया जाता है ना संगीत, तो बड़े प्रचलित है, मंदिर से भी उसकी बिक्री होती थी पहले, कैसे अभी नहीं होता है। जो नाविक होते हैं दूसरे नाविक से पैसा नहीं लेते हैं, वैसे बाल काटने वाले होते हैं तो उस पड़ोसी वाले उसे आएगा तो उसे पैसा नहीं ले, फ्री में कर देते हैं। तो वह कहा कि आपसे मैं लेकर अपनी नैतिकता का हनन नहीं करना सकता हूं कि मैं नाविक हूं और आप भी सिमिलर काम करते हैं, आपका भी है, तो यह कैसे है। तो वो कहता कि मैं तो गंगा जी को छोटी छोटी नदी को पार करता हूं, आप लोगों को अपने भक्तों को भवसागर से पार करते हैं, तो काम वही है, चाहे भले आप बड़े हैं, चाहे भले आप बड़े व्यापारी हैं इस प्रोफेशन में हैं, लेकिन मैं छोटा हूं, लेकिन हम लोग की जाति लगभग एक ही है, एक ही काम करते हैं, इसलिए आपसे मैं। लेकिन अब प्राकृत कवियों ने गान किया है और यह उचित ही है, लेकिन वहां पर जो वाल्मीकि तो चर्चा नहीं करते हैं इस बात की, लेकिन अन्य जो रामायण में से चर्चा की गई है तो वो कहते हैं कि वो कहा कि नहीं इस बार तो नहीं, मैं नहीं लूंगा, लेकिन फिरति बार प्रभु जो कछु देवा सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, लौट कर देंगे तो वह अभी चाहता था केवट की भगवान जा रहे हो, चाहे दूसरे रास्ते से आ जाए चाहे दूसरे साधन से आ जाए, तो कम से कम उसने निश्चित करा लिया कि इधर से ही आएंगे, तो एक बार और भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो भगवान बहुत प्रयत्न किए तो कुछ लिया नहीं। और आप लोगों की जानकारी के लिए, जब भगवान उधर से आ रहे थे, लंका से भगवान लौट कर आ रहे थे, तो उधर से भगवान पैदल नहीं आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? वो विमान से आ रहे थे, एयरप्लेन से आ रहे थे, पुष्पक विमान था, कुबेर का था ना, कुबेर का वह विमान था, स्पेशल कुबेर, धन के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, स्वर्गीय लोक खजांची हैं, ट्रेजरर हैं देवताओं के, कुबेर, उनका वह विमान था, पुष्पक विमान। तो भगवान जा सकते थे ऊपर, लौटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब वहां से विमान जाने लगा तो भगवान ने कहा कि नहीं, यहां पर भी कुछ लैंडिंग होना चाहिए, थोड़े देर के लिए रुकना है। तो आते समय इस बार तो पार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन केवट के तट पर जहां वो नाव चलाता था उस पर भगवान आते समय भी थे, रुके थे, तो उसको उसने सौभाग्य दिया। तो केवट भगवान का एक बहुत पुनीत श्रेष्ठ अन्यतम भक्त है, भगवान ने उनको सौभाग्य दिया, डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरणों को उसने धोया था। यह बड़ा भाई सौभाग्य, बड़े बड़े ब्रह्मा शिव इत्यादि देवताओं के लिए जो चरण दुर्लभ है, जिनके ध्यान में भी आ जाता है वह चरण, तो उसी को बहुत अपना कृतकृत अपने को मानते हैं, उन्हीं भगवान के चरणों को देव दुर्लभ शिव और ब्रह्मा जी के लिए जो दुर्लभ चरण है, उन दर्शन जिनका दुर्लभ है, जिनका ध्यान दुर्लभ है, उन्हीं चरणों को केवट ने धोया था और उस जल का उसने सब परिवार अपने परिवार के साथ पान किया था। इसके बाद भगवान की सेवा की थी कि उसने पार किया था, बड़े प्रेम से पार किया था। तो यह एक घटना, यह दृश्य उपस्थित हुआ था रास्ते में जाते समय, भगवान जब जंगल में जा रहे थे। तो हम यहाँ समाप्त करते हैं, कल हम लोग इसके आगे की कथा, और प्रयत्न करेंगे कि सभी कुछ तो नहीं हो सकता है, लेकिन दो तीन जो अलग बात समय हो गया है ना, तुलसी आरती हो गई
हो रही है।
ठीक है, तो भगवान वहां से आगे बढ़े। भगवान राम तो भगवान राम वहां के बाद गए थे प्रयाग इलाहाबाद, गंगा जी के तट पर ही चलते चलते भगवान गए वहां पर प्रयाग में। तो प्रयाग में भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में रुके थे। भरद्वाज एक ऋषि हैं, आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध ऋषि हैं, उनके यहां भगवान रुके थे। तो आश्रम था बट वृक्ष के नीचे, रात्रि भगवान ने व्यतीत किया। और इसके बाद भगवान वहां पर उनके साथ एक रात्रि निवास किए थे। इसके बाद फिर भगवान जमुना जी के तट पर कुछ समय तक चलते रहे और जमुना जी को पार किया था। अभी जो वह गांव है, एक गांव है राजापुर गांव का नाम है, वहीं पर भगवान जमुना जी को पार किए थे। राजापुर वह गांव है जहां पर जो प्रसिद्ध कवि हैं रामचरितमानस के रचयिता, उनका गांव है। अभी उन्हीं का गांव वहीं पर राजापुर गांव, तो वहीं भगवान पार किए थे। तो वहां पर जब भगवान पार कर रहे थे जमुना जी को, तो भगवान के जो शरीर का जो रंग था वो ठीक जमुना जी के पानी से मिलता था। जमुना जी यदि भगवान के रंग कोई जानना चाहता है तो इस समय पॉल्यूशन कुछ हो गया, जमुना जी शुद्ध जो जमुना जी का जल है जमुनोत्री से निकलता है, तो वहां पर जमुना जी का जल जैसा देखते हैं, तो भगवान का शरीर ठीक उसी रंग का था। तो भगवान जमुना जी में स्नान किए थे और जमुना जी में स्नान करने के बाद भगवान वहां से चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए थे। भगवान जब चित्रकूट के तरफ जा रहे थे तो चित्रकूट जाने से पहले उनको एक ऋषि से मुलाकात हुई थी, वाल्मीकि ऋषि से, जो रामायण के रचयिता हैं, ऑथर हैं वाल्मीकि रामायण के। तो वाल्मीकि जी से उनकी मुलाकात हुई। वाल्मीकि जी के आश्रम पर जब वो गए, भगवान गए, वाल्मीकि जी को बहुत प्रसन्नता हुई। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा अतिथि को स्वयं भगवान, जिसकी प्राप्ति के लिए जीवन जीवन भरो तपस्या में लगे होते, जिन भगवान की प्रतीक्षा वो लोग कर रहे थे, तो वाल्मीकि जी के आश्रम पर भगवान गए। वाल्मीकि जी ने भगवान का स्वागत किया और वहीं पर भगवान पूछे वाल्मीकि जी से कि वाल्मीकि जी, मेरे पिताजी ने हमको 14 वर्ष के लिए जंगल में रहने को कहा है, तो आप ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर मेरे रहने से किसी साधु महात्मा को ऋषि को डिस्टर्बेंस ना हो, मेरे प्रेजेंस से मेरे उपस्थिति से कुछ को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और मेरे निवास करने लायक कोई स्थान बताइए, मैं कहां निवास करूं। तो वाल्मीकि जी ने उनको स्थान बताया, वाल्मीकि ही ऋषि हैं, उन्होंने बताया कि आप चित्रकूट में निवास कीजिए। और उन्होंने बताया कि चित्रकूट बहुत बढ़िया रमणीय स्थान है, सुंदर पर्वत श्रेणी है, वहां पर एक नदी भी प्रवाहित होती है जो वास्तव में गंगा जी ही है, गंगा जी की एक विशिष्ट धारा है जिसको अनसुईया ने अपने तप के बल से प्रकट किया हुआ है। तपस्या के द्वारा अत्रि मुनि को पूजा करने के लिए गंगा जी को अनसुईया जी ने प्रकट किया है। वो गंगा जी हैं, उनका नाम वहां पर मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है, अत्रि जैसे महान ऋषि मुनि वहां पर निवास करते हैं, आप वहीं निवास कीजिए। परंतु यह कहने से पहले जो भगवान पूछ रहे थे, भगवान ने कहा कि आप बताइए, आप तो सर्वज्ञ ऋषि हैं, सब कुछ यहां का देखे हुए हैं, आप बताइए मुझे कहां निवास करना चाहिए। तो पहले वाल्मीकि जी नहीं बताए, वाल्मीकि जी ने ही एक प्रश्न पूछा भगवान से, भगवान आप कहते हैं कि आपको कहां रहना चाहिए, आप ये पूछ रहे हैं कि आपको पूछ रहे हैं कि मुझसे कि मैं कहां रहूं, मैं आपसे बड़ा संकोच पूर्वक एक बात पूछना चाहता हूं, पहले हमको यह आप बता दीजिए कि आप कहां नहीं हैं। भगवान से पूछा आप कहां नहीं हैं। भगवान का एक विशेषता है ना, सभी जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है। हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद महाराज से यही बात पूछा था, भगवान कहां है। तो इमीडिएट और उत्तर था प्रहलाद महाराज, भगवान सभी जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है, भगवान सभी जगह है। प्रहलाद महाराज यही भागवत में है उत्तर दिए, वो पूछा कि भगवान तुम जिस भगवान की तुम आराधना करते हो, विष्णु का भजन करते हो, वो विष्णु कहां रहता है, भगवान कहां रहता है। तो उन्होंने कहा भगवान सभी जगह रहते। तो ये बात कन्वर्सेशन चल रहा था महल में, पैलेस में, तो वहां के पिलर लगा हुआ था, बहुत अच्छा बढ़िया मार्बल पिलर था। तो पूछ दिया कि सभी जगह है तो इस पिलर में भी हैं। तो प्रहलाद महाराज कहां है, तो और भी वर्णन करने का था, कहा तो तुम मुझको तो नहीं दिख रहे हैं, वो लोग भी कहते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि हाँ इस पिलर में भी है, मुझको दिख रहे हैं। तो उसे क्रोध आया और अपने हाथ से उसको मार दिया था, अथवा गदा से मार दिया, तो पिलर टूट गया था। तो वहां पर जब टूट गया, नृसिंहदेव प्रकट हुए, तो सुखदेव गोस्वामी के अलग कमेंट है उस पर, सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम, अपने भक्त प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि भगवान सभी जगह हैं, तो इस वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उस पिलर से प्रकट कर रहे, नहीं तो पिलर टूट गया, भगवान वहां नहीं प्रकट होते है। तो तत्कालिक जो प्रहलाद महाराज की उक्ति थी कि इस पिलर में भी हैं, तो उनका वाक्य असत्य सिद्ध होता है। तो इस बात को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निजभृत भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, और दूसरा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक तो प्रहलाद महाराज के इमीडिएट वाक्य की रक्षा करने के लिए प्रहलाद महाराज ने कह दिया है कि इस पिलर में है, तो इस बात को सत्य कर देना है, भगवान वहां से प्रकट हो गए। और दूसरी यह भगवान को बताना था कि व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, भगवान सभी जगह है, इस वेद वाणी को सत्य करने के लिए, यह वेद वाणी पर कोई डाउट न करे, इसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज न करे, इसलिए भगवान वहां पिलर से प्रकट हो गए। तो वाल्मीकि जी ने यही बात पूछा है, भगवान पूछे कि बताइए मैं कहां रहूं, 14 वर्ष तक हमें पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं, जंगल में रहना है, तो कोई एक ऐसे अच्छा स्थान बताइए जबकि हम किसी ऋषि मुनि को बिना डिस्टर्ब किए, किसी के भजन में हमें बाधा, मेरी उपस्थिति के कारण किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, किसी को तंग नहीं होना चाहिए, भजन में बाधा नहीं होना चाहिए, तो बताइए मैं कहां रहूं। वाल्मीकि जी ने बताया भगवान पहले आप यह बताइए कि आप कहां नहीं, तो भगवान मौन रह गए, चुप रह गए, हार गए उस कन्वर्सेशन में, भगवान को मौन रहना पड़ा। ऐसे उन्होंने फिर बताया है, 14 स्थान बताया है वाल्मीकि जी ने, पहले इन स्थानों पर आप रहिए, 14 स्थान का उन्होंने जिक्र किया, 14 स्थान आपके रहने के लिए। तो 14 स्थानों का है सारांश यह है, वाल्मीकि जी ने बताया कि भगवान आपके रहने का जो बेस्ट सुटेड प्लेस, सबसे बढ़िया मैं जगह बताता हूं आपको कहां रहना चाहिए, आपके रहने के लायक सबसे बढ़िया जगह है आपके शुद्ध भक्तों का हृदय, आप उसी में रहिए, सबसे आपको रहने का बढ़िया जगह मैं बता, सबसे बढ़िया जगह जो भगवान आपके जो शरणागत भक्त हैं, आपके श्रवण कीर्तन में जो लगे रहते हैं, छल कपट से दूर रहते हैं, जिनका हृदय एकदम शुद्ध है, तो उस हृदय में ही आप निवास कीजिए। तो यह वाल्मीकि जी का भगवान से एक आग्रह है, और इसके साथ वरदान भी है भक्तों को कि यदि हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान आपके हृदय में निवास करेंगे, वाल्मीकि जी ने कहा है, भगवान वहां निवास करते हैं। यह तो औपचारिक रूप से बता दिया उन्होंने कि यह आप भगवान के भक्तों के 14 विभिन्न कहें, सबका अर्थ यही है कि आप भगवान के भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। परंतु फिर उन्होंने कहा, प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से बताया कि यहां से चित्रकूट नजदीकी है, वहां पर कामदगिरी, चित्रकूट के पर्वत श्रेणियों में एक विशिष्ट स्थान है कामदगिरी, उसका नाम है, जो भक्तों की कामनाओं को पूर्ति करता है, काम द काम की पूर्ति करता है, तो वह स्थान सबसे बढ़िया है। और वह मंदाकिनी के तट पर है, मंदाकिनी नदी नीचे से प्रवाहित होती है, वहां पर अनुसुईया जी का आश्रम भी है, अत्रि जी का आश्रम है, तो आप उसी स्थान पर उसी तट पर नहीं है। तो भगवान वाल्मीकि जी के एडवाइस को उनके सलाह को स्वीकार करके लगभग 11.5 वर्ष तक भगवान चित्रकूट में निवास किए थे। ठीक है, प्रश्न आज नहीं है ना, पूछना चाहते हैं तो पूछिए, एक दो मिनट तो है हमारे प्रश्न। क्या पूछ रहे हैं कि वो मिट्टी कास्ट के बर्तन में पानी क्यों लाया, चांदी में ला सकता था, निषाद राजा थे तो भगवान का चरण होना है तो स्वर्ण पात्र होना चाहिए, चाहे चांदी का पात्र होना चाहिए, तो वह क्यों कास्ट का बर्तन ला दिया, काठ का। उसको एक चरण तो धोना था, परीक्षण भी करना था ना, नौका काठ की थी, नौका काठ की थी तो उसी तो इसीलिए बर्तन भी वो काठ का लेना चाहता था कि यदि यह काठ स्त्री में बदल जाएगी तो मैं नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा, काठ उसी से परीक्षा होगा चरणों की, नहीं तो काठ बनेगा तो छोटा सा चलो बन जाएगी स्त्री बन जाए तो क्या दिक्कत है, छोटा सा काठ, लेकिन कहीं सोने का ला दिया वही स्त्री बन गई तो वही लॉस है ना, और जो टेस्ट भी बढ़िया से नहीं होता है, हो सकता है कि सोने का पात्र था वो स्त्री नहीं बनती, लेकिन काठ को बन, काठ तो नरम चीज है वो स्त्री बन जाती, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसीलिए एकदम काठ की नौका है तो काठ के ही बर्तन पता लग जाएगा ना कि जब काठ का बर्तन स्त्री नहीं बना तो मेरी नाव भी स्त्री नहीं बनेगी। नहीं, राजा था, राजा अलग था, निषाद राज था, और जो पार किया था उसमें एक था, वो राजा नहीं था। हाँ, होंगे भी नहीं, कहां से ऐसे मांग ला सकता था, राजा तो वही, वह भी वही खड़े थे, निषाद राज भी वही खड़े थे। चौदह 15 साल आप चाहते हैं, आप कितना चाहते हैं, 14 ही बड़ा ज्यादा संख्या है, लोग घबराते हैं, कई कई को मंथरा को आज तक गाली लोग देते हैं, आप 15 साल करेंगे तब तो आपको उसी कटघरी में लोग डाल देंगे, आप कितना चाहते हैं, कम चाहते हैं, दशरथ जी 4 दिन चाहते थे, चाहती थी कि उतना समय तब तक वेल एस्टेब्लिश भरत हो जाएंगे, 14 वर्ष तो काफी समय होता है। हाँ, राज्य पर उसका अधिकार नहीं होता है, राज्य से बाहर रह गए 14 वर्ष तो वो इनहेरिट नहीं कर सकते, राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, लेकिन भगवान आकर तो बन ही गए, 14 वर्ष के बाद तो बन ही गए। एनी हाउ, यह मंथरा क्या सोची थी पता नहीं, लेकिन उसने 14 वर्ष ही कहा था। ठीक कहते हैं, ततः शंकराचार्य जी का प्रश्न ततः किम, ततः कुछ भी कर, इसलिए ठीक है यही समाधान करेगी, यह प्रश्न का था 14 वर्ष 15 वर्ष से कुछ भी कर कहता। ठीक है, तो हम आप ध्यान रखिएगा कि खून मंदिर भी खुलने वाला है। क्या नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा है, हाँ, मध्यम अपने को, क्योंकि पिताजी को कहना पड़ा ना, कहना पड़ा तो अब तो सेकंड क्लास में हो गए ना। उत्तम चिंतन कुरात प्रोक्त कारित मध्यम, कहने पर आज्ञा देने पर जो पालन करता है वो सेकंड क्लास का भक्त है, पुत्र है। तो कहते हैं कि मैं तो सेकंड क्लास का हो गया और हमें भी खेद बना रहेगा जीवन भर, यहाँ रिग्रेट रहेगा हमारे हृदय में कि मैं फर्स्ट क्लास का अपने को सिद्ध नहीं कर सका। बोलिए। क्या निषाद को, उस जाति को, वो राजा था, वो अभी नाव के साथ था, वो वहां तक गए थे, काफी दूर तक गए थे, इलाहाबाद प्रयाग तक वो गए थे शासन के, इसीलिए उनका नाम है निषाद। ओके।
क्या
व्यवस्था है, एक पद है हिंदी में, पिता तजो प्रहलाद भीषण, भाई भरत महतारी, बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनितहि भय मुद मंगलकारी। यदि भगवान की भक्ति के लिए त्याग किया जाता है तो उदाहरण है, पिता प्रहलाद महाराज पिता का त्याग कर दिए, रिफ्यूज कर दिए आज्ञा का पालन नहीं, कि पिता तजो प्रहलाद विभीषण अपने भाई का त्याग कर दिए। पिता तजो प्रहलाद विभीषण भाई भरत माता, भरत जी ने माता का परित्याग कर दिया। ऐसा वर्णन है कि जीवन भर बाद में कभी भी कई कई किलो मां शब्द का प्रयोग नहीं किए, दूसरा संबोधन करते थे। गुरु बलि तजयो, गुरु गुरु शुक्रा बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनित ही भय मुद मंगल का। आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, यह एक शिष्टाचार है, नैतिक भौतिक शिष्टाचार है, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए सामान्य स्थिति में। लेकिन भगवान की भक्ति आप सच में करना चाहते हैं तो उस समय भक्ति के लिए थोड़ा सा पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन भी होता है, अपराध भी होता है, तो कोई बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता। प्रहलाद महाराज को कोई दोष नहीं देता है ना, टॉप कटहरी के बड़े सुशील भक्त हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, तो चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अननेसेसरी पिता का अपमान नहीं करना चाहिए।